اسی محال میں ادنا کوالا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو.
السلام علیکم, کیا حال ہے میرا شریف؟ السلام علیکم, کیا حال ہے؟ السلام علیکم.
ابھی آپ تشریف رکھتے تھے نا وہاں پہلے آپ کا بیان
جی
ماشاء اللہ. ابھی کیا حکم ہے ہمارے لیے؟
مجھے کہا گیا تھا کہ بیٹھیں گے تو کچھ ڈسکشن ہوگی, کچھ بات چیت ہوگی, کچھ ریکارڈنگ ہوگی. چلے چلتے ہیں, بیٹھتے ہیں.
تو آپ کو تو محاورہ ہے نا, تیرے بولنے تو بولنے شروع ہوئے, ہم ایسے بتانا پڑتا ہے کیا بولنا ہے,
اسکرپٹ پہ چلتے ہیں.
ہاں جی, تو وہ بتائیے گا نا کہ کیا کیسے کیا کیا.
ہماری تو تقریباً 7-8 سال ہو گئے مدنی چینل کھلے ہوئے, ابھی تک تو ود آؤٹ اسکرپٹ چل رہے ہیں.
ہاں جی, ماشاء اللہ. آپ کو تو محاورہ ہے نا,
کیونکہ اصل میں وہ ہماری لائن یہی ہے, پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے دعوت اسلامی کے حوالے سے بیانات وغیرہ جو بھی کچھ چلتے تھے. پہلے آڈینس کو سنانے کے لیے منہ کے سامنے مائک رکھ دیا جاتا تھا, اب گھروں تک پہنچانے کے لیے چہرے کے سامنے کیمرہ رکھ دیا جاتا.
اب ماشاء اللہ اتنے ملک دیکھ رہے ہیں مدنی چینل.
ہم نے تو ایک دور دیکھا کہ تصویر بھی کہتے تھے مولانا بری چیز, اب خود تصویریں کھنچواتے ہیں.
فوٹوگرافی کے بارے میں
یہ کہا جاتا تھا,
کہا جاتا ہے, کہا جاتا تھا نہیں کہا جاتا ہے. فوٹوگرافی کے بارے میں اب بھی یہی ہے, لیکن جو تحقیق ہے وہ بھی فوٹوگرافی نہیں ہے. جس کو آپ فوٹوگرافی کہتے ہیں مووی فوٹوگرافی نہیں ہے. مووی کو جو تحقیق ہے علماء کی یا جو ایک سائنٹیفک تحقیق ہے اس میں یہ پروف کیا گیا, جو کتابوں میں لکھا گیا کہ یہ ایک عکس ہے. جیسے آئینے کے سامنے ہم آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, اس طرح یہ ایک عکس ہے. جو فوٹوگرافی ہے, امیج جس کو کہتے ہیں آپ, اس کے اور اس کے حکم میں فرق ہے. جی آپ, میں پھر آپ کی یہی موضوع چل رہا ہے, یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جی میں لواری صاحب جو فرما رہے ہیں, تصویر کی جو بات کی جا رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایسا ہے. جی
ہم اس کو منع کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں.
جی
لیکن مجھے آج 4 دن ہو گئے ہیں یہاں میں آیا ہوں, یعنی جس دن سے میں چلا, بدھ والے دن سے چلا, اور آج یہاں ماشاء اللہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, بہت کچھ حاصل کیا ہے. کچھ ذہنی اور دل کی جنگ بھی ہو رہی ہے کہ یہ صحیح ہے, ہم افساد رات سے کچھ ایسا دیکھتے آئے, کچھ ایسی چیزیں بھی آئیں جس میں تھوڑا سا ذہن اختلاف کر رہا ہے اور دل اس کو مانتا ہے, کسی چیز کو دل اختلاف کر رہا ہے اور ذہن مان رہا ہے. میں جب اسٹیشن پہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ چلا تو میں ظاہر ہے ٹوپی لی ہوئی ہے, رومال لیا ہوا ہے, میں آرٹسٹ ہوں لوگوں میں, مجھے لوگوں نے پینٹ شرٹ میں دیکھا ہے یا کسی چیز میں دیکھا ہے. تو وہاں وہ کچھ بنانا تھا, میں سمجھا کہ میں نے کہا یار یہ ایک پبلسٹی ہے جو میں اپنے اس گیٹ اپ کی نہیں کروانا چاہتا, کہ ٹھیک ہے اس کو پردے میں مجھے دکھاوے کی کیا ضرورت ہے کہ سرفراز بھی کی آج ایسے ہیں. پھر تصویر کا کھینچنا, بہت سارے میں نے مرکز میں دیکھا سیلفیز بنا رہے ہیں, پورا پوز لے رہے ہیں,
جی
فوٹو کھینچ رہے ہیں. میں مکہ شریف گیا, مدینہ پاک گیا, میں نے الحمدللہ 7 سے 8 عمرے کیے ہیں اور حج اکبری کیا ہوا ہے. میں نے وہاں بھی لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ طواف کرتے ہوئے سیلفیز بنا رہے ہیں, ہجرت سب کے ساتھ لگ رہے ہیں, سیلفی بنا رہے ہیں, پھر اس کو فیس بک پہ چھوڑتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں سیلفی بنا رہے ہیں, پھر اس کو فیس بک پہ چھوڑتے ہیں. وٹ از دس کہ بھی یہ پبلسٹی عبادات میں کیوں ہے؟ میں اس پہ اگری نہیں ہو رہا, اس بات پہ مجھے بھی وہاں لوگوں نے کہا ذرا
मैंने कहा यार खुदा का वास्ता, मैं तो अल्लाह को अपनी तौबा के लिए आया हूँ, अल्लाह को मनाने आया हूँ, या मैं सेल्फी मनाने थोड़ा आया हूँ, ये मेरी सेल्फी आप खींच के ठीक है मैं आर्टिस्ट हूँ आप ये दिखाना चाह रहे हैं
तेरा पेट भरा हुआ है
वो एक यानी मेरा जहन ही नहीं उस बात को मान रहा है। मेरे मुर्शिद पाक मेरे साथ थे, लास्ट उमरा मैंने किया खानदानी चिश्त से, मैं मुरीद हूँ बाबा फरीद शकरगंज चिश्तिया साबरी सिलसिला है मेरा। वेरी फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ, वो भी अनीस भाई वगैरह ये माशाल्लाह से खूबसूरत चीज़ है, जहाँ आपको दीन की बात मिलती है, अल्लाह की बात मिलती है, अच्छी कोई बात मिलती है, तो उसको
आपको कंफ्यूजन ये है कि अगर
ऐसा क्यों है,
फोटोग्राफी अगर आप गलत है
तो फिर ऐसा क्यों है,
कैमरे में क्यों है,
फिर हाँ फिर क्यों,
सिंपल सा क्वेश्चन ये
क्यों ऑन टीवी जो है ना ये बात कीजिएगा।
हाँ जी
हाँ जी साहब
लाइव बात करिएगा रिकॉर्डिंग,
नहीं नहीं अभी नहीं है रिकॉर्डिंग,
रिकॉर्डिंग हो रही है,
रिकॉर्डिंग
मेरे आते रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, पर्दे में कुछ नहीं है।
अच्छा वो दरअसल हम लोगों को ऐसा होता है कि पहले क्यों कहना पड़ता है,
मैं अंदर से मदीना गलवा कर आया हूँ,
अंदर से मदीना गलवा कर आया हूँ,
फिर तो मैं
ना ना नो प्रॉब्लम,
फिर उसमें हम वो देख रहे होते हैं कैमरामैन हमें कह रहा था जरा प्रोफाइल हो रही है आपकी, आप थोड़ा
ये सब कुछ लेकर बैठे और मैं अंदर कह कर आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ अब रिकॉर्डिंग शुरू रखना, जाते जो गुस्तगु होगी ना हम रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है,
बहुत अच्छी बात है,
हमें बता दीजिए जरा हम मौसा
सच्चाई वाली बात,
कोई इशू नहीं है। मैं अब आपको बता सकता हूँ कि ब्लड नापाक है, खून नापाक है,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं,
जब तक खून बदन के अंदर है वजू बाकी है, ब्लड बदन से निकला वजू गया, पेट में हवा मौजूद है, जब तक वो हवा पेट के अंदर है वजू बाकी है,
वजू बाकी है,
जैसे हवा खारिज हुई वजू गया, नजासत पेट के अंदर है वजू बाकी है, जैसे नजासत निकाली वजू गया, जब तक ये इमेज मोबाइल के अंदर है दुरुस्त है, जिस दिन इसका प्रिंट निकाला नाजायज हो गया। जो हम कहते हैं ना कि हमें बात क्लिक नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही है, तो वो सिंपल सी बात है कि आपकी अपनी 50 साल की एक प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है, मैं भी मीडिया से ताल्लुक रखता हूं, मैं 8 साल से मीडिया से ताल्लुक रखता हूं, ओके, वह आप 50 साल से मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, हम दोनों मीडियन है मगर हम दोनों की लाइन अलग है,
बिल्कुल
ठीक है, हम दोनों की लाइन अलग है। जब मैं आपकी लाइन में आकर आपसे 4 सवाल करूंगा और आप मुझे कहेंगे नहीं इमरान ये यूं नहीं यूं, मैं कहूंगा लगारी साहब मेरी समझ में नहीं आया तो मुझे लगारी साहब बड़े लॉजिकल जवाब देंगे कि इमरान आपकी समझ में इसलिए नहीं आया कि जो चीज मैंने 50 साल या 40 साल में सीखी है और बड़ी डीप्थ में जाकर सीखी है वो आपको 2-4 साल में नजर नहीं आएगी, थोड़ा वक्त गुजारे। तो ये सारी चीजें ये मसाइल ये जितनी भी चीजें हम करते हैं ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो समझ में आ जाती हैं। हम स्विचर के साथ बातों का बैठे होते हैं तो स्विचर को कहते हैं कि यार ये ले लो, तो स्विचर को चूंकि 10-10 साल 20-20 साल का तजर्बा है तो स्विचर कहता है ये नहीं ले सकते, भाई क्यों नहीं ले सकते, फिर हमको समझाते इसलिए नहीं ले सकते इसके बैकअप पे ये इसका ये है तो ये यूं आ जाएगा यूं आ जाएगा ये डेलो बिकॉज ही हैव एक्सपीरियंस,
बिल्कुल सही
ठीक है। तो अब हम कहेंगे नहीं मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, तो ये बात भी दुरुस्त समझ में नहीं आई मगर समझ में क्यों नहीं आई कि डिफरेंसेस मौजूद है, फासला मौजूद है। आप को हमको शरीयत ये अहकाम अगर समझने हैं जो मैं बयान कर रहा हूं
जी
तो हमें एटलीस्ट चंद साल तो गुजारने पड़ेंगे ना कि ये चीज जीवनी इस वजह से ये कही गई है। हम कल मूवी का मना कर रहे थे, तस्वीर का तो कल भी मना करते आज भी मना है, आप उसे ये जरूर सवाल कर सकते हैं इमरान तुम कल तस्वीर का मूवी का भी तो मना करते थे आज आप लोग मूवी क्यों बना रहे हो, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि उलमाए कराम की अलग अलग तहकीक है, अब जब तहकीक उनकी हमारे सामने आई कि जिन्होंने मूवी के जवाब पर फतवा दिया है ठीक है मूवी जायज है और उसके जवाब होने की ये सूरतें हैं, तो जब वो चीज समझ में आई तो हमने मूवी को अपने लिए अख्तियार कर लिया और मूवी को हमने तबलीग का जरिया बना लिया कि इस वक्त जराए अबलाग के जरिए तबलीग का काम करना ये ज्यादा जरूरी हो गया। जाहिर है कि लोहा लोहे से कटेगा, अब जो हमारी जो इंटेंशन है वो मैं आपके सामने बिल्कुल डिक्लेयर कर देता हूं, जैसा अभी मैंने कहा कि हम तो ऑन रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना। बिकॉज सिंपल सी बात है कि लोग मीडिया के मैसेज को कबूल कर रहे हैं, मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है लोग ले रहे हैं। अब मीडिया पर गम हो तो शराब पी लो, खुशी हो तो शराब पी लो, मां मर गई तो शराब पी लो, बाप मर गया तो शराब पी लो, बेटा पैदा हुआ तो शराब पी लो, शादी हो गई तो शराब पी लो, तलाक हो गई तभी शराब पी लो, वो हर सूरत में वो शराब ही की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये एक मैसेज जा रहा है कौम की तरफ, तो डेफिनेटली कि अब लोग विजुअलाइज मीडिया टीवी इसके जरिए हमारे, देखिए एज ए मुस्लिम आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे
जी जी जी,
कि मीडिया के जरिए एज ए मुसलमान कौम के अखलाक अकदार और किरदार ये तबाह हुए हैं, ठीक है। इसका तो मेरा ख्याल है कोई भी इनकार नहीं करेगा
जी जी,
इसमें जिसने हिस्सा मिलाया वो खुद अपने लिए गौर करे कि मैंने क्या हिस्सा मिलाया। अब लोहा लोहे से कटेगा
बिल्कुल ठीक है।
तो अब इस कौम को मीडिया के फितने और मीडिया के फसाद से बचाने के लिए लाजमी है कि मीडिया के जरिए आ गया है, मगर उसके लिए आपको जरिया जायज इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मीडिया औरत को दिखाकर लोगों को खराब कर रही है तो मैं औरत को दिखाकर लोगों को सही नहीं कर सकता,
बिल्कुल सही।
हम औरत को नहीं ला रहे, मीडिया अगर म्यूजिक के जरिए कौम को बर्बाद कर रहा है तो मैं म्यूजिक के जरिए कौम को सही नहीं कर सकता। अच्छा, फिर इस मदनी चैनल पर हम आम मुसलमान का एतमाद बहाल हो मजीद, हमने एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दी, हमने इसको खाली सतह दीनी और मजहबी रखा कि बिल्कुल दीनी और मजहबी रहे ताकि लोग इसको अपना चंदा दें। मुझे पता है कि इतना आप ही समझते थे इतना बड़ा मीडिया बिगैर कमर्शियल के कैसे चल सकता है, लेकिन हमारा मदनी चैनल विदाउट कमर्शियल चल रहा है ना, क्योंकि लोग अपना चंदा दे रहे हैं। चंदा क्यों दे रहे हैं? अपने घर पर इंटरटेनमेंट लेने के लिए नहीं, चंदा दे रहे हैं ताकि हम दीन
सीखें,
दीन सीखें, और हमें उनके चंदे को इस्तेमाल ही इसी तरह करना है कि हम दीन पहुंचाएं। अच्छा, अब इस वक्त भी हम बात कर रहे हैं
घर बैठे एक तरबियत हो जाए,
हो रही है,
हो रही है,
इसका भी हम इंतजार नहीं करेंगे। मेरा यूके जाना होता है, मैं यूरोप जाता हूं, मैं अफ्रीका जाता हूं, मैं फॉरेस्ट के यहां गया हूं, बांग्लादेश गया हूं, मैं इंडिया गया हूं, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मुझे जाना का वो मिला दावत इस्लामी के हवाले से। देखो ये इसको मीडिया का इम्पैक्ट है, उन्होंने टीवी पर देखा झूमता हुआ तो उसने वो झूमने की नकल की शराब की तरह, उससे टीवी पर देखा कि नाक पढ़ते पढ़ते भी लोग झूमते हैं तो वो नाक सुनते सुनते झूमने लग गया। तो जैसा आप देंगे वैसा लोग लेंगे, ये तो बात हमने भी समझ ली है कि लोगों को देने आना चाहिए आपको, कहते ना कि बेचने वाला होना चाहिए या मिट्टी भी बिकती है। यही मूवी जिसमें मैं इस सामने बैठा हूँ आप बैठे हैं, अगर इसी कैमरे से आप कोई नाजायज मंजर को कैप्चर करेंगे तो वो फेर ही नाजायज है ना,
सही सही सही,
तो ये नाजायज हो जाएगा
जी, सही है।
अगर इसी कैमरे से अगर आप कोई जायज चीज को कैप्चर कर रहे हैं तो जायज हो जाएगा।
अच्छा इमरान भाई, आप माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसी बातें हमें मिल रही हैं। मैं लगारी साहब तस्वीर को मेरी एक ना कि मैं अपनी अकल के मुताबिक जिस चीज को देखता हूं कि मैं समझता हूं कि आपके दिल में किसी और की तस्वीर नहीं होनी चाहिए।
असल में आप चिश्ती के सिलसिले गए और पीर साहब के साथ आता रहे
मैं दो क्वेश्चन है आगे, एक बात कि मैं ये सोचता हूं कि आपके दिल में कोई और तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ये उस तस्वीर की दुनियादारी के अंदर रहने के लिए आपको शनाख्ती कार्ड बनवाना पड़ेगा तो तस्वीर लगानी लगानी है, उसका प्रिंट निकल आया
बेटा। अगर दिल पर देखे ना तो फिर इनकी दाढ़ी में क्या जरूरत है, दिल में ही रख लें,
नोट
कार्डबल हो जाएगा, अगर बाल निकल आएगा दिल के अंदर, दिल में बाल निकल आएगा मसला हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम है।
मैं कहता हूँ सवाई अल्लाह के आपके यहाँ ये जो आप जिसको देखते हैं, जिसको आप महसूस करते हैं, जो आपके अंदर बैठा है, जो आपके अंदर मौजूद है, जो ये बोल रहा है, अगर वो नहीं होगा अंदर तो कुछ नहीं बोल पाते आप।
वो तो आप
वो निकल गए,
आप जान मेरी
होगी बात,
वो तो आप पर है ना, वो तो तक है ना बात।
अल्लाह तबारक व तआला ये मकान और जिस्मानियत से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला की याद, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र, अल्लाह तआला की मोहब्बत मेरे अंदर है
माशाल्लाह,
ठीक है। और मतलब ये होती है चीजें। और देखिए मसला ये है, ये जरा मैं शब्द देख सकता हूँ पी नहीं रहा हूँ एक मिनट नहीं नहीं मैं अर्थ कर रहा हूँ उसको हाथ लगाए ठंडा है गर्म
ठंडा
क्योंकि ये अंदर ठंडा है आपको बाहर क्या लगा
ठंडा
जैसा अंदर है ना वैसा बाहर है
खूबसूरत
ये नहीं होता कि मेरे अंदर कुछ और है मेरे बाहर कुछ और बंदा वही अच्छा जिसका जो अंदर है ना वही बाहर हो
माशाल्लाह ये देखिए मेरी इस्लाम
तो अंदर बाहर अगर प्याली गर्म चाय गर्म होगी अंदर में तो प्याली भी गर्म होगी तो बुजुर्गों ने यही फरमाया कि जैसे एक शख्स को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहजा फरमाया कि नमाज की हालत में अपने जिस्म से के हिस्से से खेल रहा था तो इरशाद फरमाया कि अगर इसके दिल में खुशी होता तो इसके आज़ा में भी खुशी होता तो जो हमारे यहाँ ये जो ये तो औरतें भी इस तरह का फलसफा झाड़ती हैं जो पर्दे और पर्दा करना तो है नहीं मैं देखे मेरी बुरा मत मानिएगा
नहीं नहीं मैंने अपनी इस्लाह के लिए आपसे ये बात की
मतलब पर्दा उनको करना नहीं है
जी जी
अब उनको पर्दे का समझाओ तो फिर कहती है कि जनाब दिल का पर्दा होना चाहिए फिर वो बोले तेरे दिल पर पर्दा आएगा तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा तो बच्चे की थोड़ी दिल पर पर्दा आएगा तो वो तो पर्दा जो इस्लाम और दीन का एक काम है कुरान और हदीस का वाज़ह फरमान है कि पर्दा करना है तो ये तो जो पर्दे की फर्जियत ही का इनकार कर देगी जो फर्जियत कुरान से साबित है तो वो तो मुसलमान ही कब रहेगी ऐसा अजीब हाल है माहौल इतना मतलब कि वो हो चुका है मैं एक फ्लाइट में
सिर्फ औरत के लिए है या मर्द के लिए भी है
मर्द के लिए देखे औरत ही पर्दा करेगी मर्द ने ये करना है कि मर्द ने अपनी निगाहें झुका कर रखनी है और बेपर्दा औरत के आगे मर्द को आना नहीं है और मर्द को हुक्म ये है कि वो औरत को अजनबी औरत को मर्द नहीं देख सकता ये मसला है ठीक है नहीं देख सकता नहीं देख सकता जिसको अलाव नहीं है अलाव जिसको है वो जैसे गवाह है इस तरह के और होते हैं यानी ऐसा माहौल मैं आपको एक माहौल बयान करता हूं आपको मजा आ जाएगा सदियों पुराना वाक्य है एक औरत ने काजी उस वक्त अदालत होती थी आज कोर्ट होती है ठीक है तो उस वक्त अदालत में काजी साहब के पास एक औरत ने अपने शोहर के लिए महर का मुकदमा दायर कर दिया काजी साहब ने अदालत कायम की औरत अदालत में पेश हुई औरत को काजी साहब ने कहा कि तेरे से निकाह हुआ महर का मसला तो गवाह पेश कर औरत ने गवाह पेश किए इनकी गवाही में मेरा निकाह हुआ है तो गवाहों ने कहा कि हम इस औरत को देखेंगे तो पछताएंगे औरत तो निकाह की हुई थी पर्दे वाली थी अब जैसे ही वो औरत ने के सामने जो गवाह है तो गवाहों ने कहा कि पर्दा निकाह खोले चेहरा देखे तो कहेंगे हमने इसी की गवाही दी थी अब वो औरत का हाथ कहां पर था अब भरी अदालत में वो अपना चेहरा कैसे खोले वो पर्दे वाली औरत थी अब जैसे उसका हाथ कहां पर था तो उसका शोर बैठा हुआ था जो बतौर मुल्जम आया था शोर ने देखा कि मेरी बीवी लोगों के सामने बेपर्दा होना नहीं चाह रही वो काजी साहब के यहां खड़ा हुआ शोर कहने लगा कि काजी साहब मैं अपनी बीवी के जो मुकदमे उसके हक में दस्तबदार होता हूं जो मेरी बीवी मुझसे चाहती है मैं देने के लिए तैयार हूं मेरी बीवी चाहती नहीं है कि ये बेपर्दा हो मैं इसे बेपर्दा नहीं कर सकता
सुभानअल्लाह
मैं अपना वो मतलब मैं इसे केस हार गया
सुभान
बीवी ने देखा कि अल्लाह मेरा शोर ऐसा जरूरतमंद है कि ये मुझे बेपर्दा देखना नहीं चाहता उसे काजी साहब मैंने अपना मार ही माफ कर दिया मेरे शोर
माशाल्लाह
तो एक ऐसा वक्त गुजरा है कि वाकई औरतें पर्दा करती थी आज औरत पर्दा नहीं करती और आपने शायद अच्छा ये औरत की बेपर्दगी को भी एक शायर ने आपने सुना होगा अकबर अलाहाबादी का शेर है बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां अकबर जमीन गैरत कौमी से गिर गया पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया बदकिस्मती के साथ हमारा मीडिया और मीडिया के जरिए हमारे घरों में जो कुछ हुआ ये सब आप जानते हैं अच्छा दूसरी बात मैं आपसे याद करूं क्योंकि अब आप लोग किसी ना एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं आपका एक अपनी फील्ड है
बदकिस्मती
अल्लाह करे कि ये बदकिस्मती हमारी जल्द खत्म हो जाए और हमें आज रात ही तौबा की तौफीक नसीब हो जैसा मेरे सुन्नत ने बड़े प्यारे मदनी फूल अता फरमाए और अपनी एक दर्द एक कुहन اب تک اس امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے.
ان کی فیلنگز کو جو
تو یہ عالم ہے عمران صاحب کے یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں نا, ہم فیلڈ میں یہ ذکر بھی نہیں کر سکتے. ہم جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں, کیونکہ اتنی اپوزیشن ہے اس میں. ہمارے پروگرامز دیکھیں, سارے چینلز جو ہیں تقریباً صبح ناشتے میں آپ کو خاتون دکھاتے ہیں.
دیکھیں آپ
دیکھو, اٹھائیں گے دیکھیں گے آپ ایسے نیوز چینل اس پہ وہی.
دیکھیں لگاری صاحب, آپ تو نہیں بول رہے یا آپ نہیں بول رہے, جو بھی نہیں بول رہا, لیکن اتنی تو میں بات ضرور کروں گا, اسپیشلی میں چونکہ آئی ایم ویری مچ پاکستانی, ٹھیک ہے. مجھے میں جس کو کہنا قطر پاکستانی, الحمدللہ, مگر بس ہوتی اپنی اپنی فیلنگس ہوتی ہیں.
جی ٹھیک ہے,
میں جب دنیا میں جاتا ہوں تو جتنا آج پاکستان میں بولا جاتا ہے نا بے پردگی کے بارے میں, بے شرمی کے بارے میں, بے حیائی کے بارے میں, جتنا آج بولا جاتا ہے پاکستان میں, ایسا دنیا کے بہت کم جگہوں پر بولا جاتا ہے. آج بھی اگر ہم کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر سٹینڈ کیے ہوئے رکے ہوئے ہیں, آج بھی کئی ایسے گھر ہیں جن میں پردہ ہے, آج بھی کئی ایسے گھر ہیں جن میں مطلب کہ وہ اس طرح عورتیں بے پردہ ہو کر اجنبی مردوں کے آگے نہیں آتی. آج بھی ایسے کئی گھر, اور یہ سینکڑوں نہیں ہیں, یہ ہزاروں گھر ہمارے پاکستان میں ملیں گے
الحمدللہ.
یہ ہمارے الحمدللہ مساجد کے ذریعے جو واضح نصیحت ہے یہ ہے, کیونکہ جہاں بولنا بند ہو جائے, جو کہ بولتے نہیں ہیں. میں وہاں گیا تھا گلاسگو اسکاٹ لینڈ, جب میں وہاں اترا تو اصل میں ہوتا یہ کہ ہم جب کسی ملک میں اترتے تو وہاں اترنے کے بعد معلوم کرتے کہ یہاں کے ایشوز کیا ہیں, پھر اس کے مطابق بیان تیار کرنے کا ذہن ہوتا ہے. کہ پھر وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرہم زخم پر لگایا جائے نا تو زخم صحیح ہوگا, اور پورے بدن پر مالش کر دیں اور زخم ہی چھوڑ دیا جائے تو پرٹیکولر وہ پرابلم لے کر جانا چاہیے کہ جو وہ سٹی کے اندر جو سوشل ایشو ہے, تاکہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کا ان کا سولوشن دیں اور آپ اپنا کام کریں چلے جائیں. تو وہاں جب میں پہنچا تو پتا چلا کہ وہاں شراب عام ہے, اور مسلمانوں کی اپنی شراب کے اپنے اپنے یونٹ ہیں, بڑا شراب کا وہاں بزنس ہے. پھر مجھے وہاں پتا چلا کہ گلاسگو کی شراب, اسکاٹ لینڈ کی شراب دنیا کی مشہور شراب کہلاتی ہے اور مسلمان چلاتے ہیں. اور تو میں نے کہا وہ ڈرائیور جو گاڑی چلا رہے تھے ان کو بھی میں نے کہا, بولا میں 18 سال سے یہاں رہ رہا ہوں, میں نے تو آج تک شراب کے خلاف کوئی بات ہی نہیں سنی. میں کہا چلیں ٹھیک ہے, پھر شراب کے خلاف تیاری کی اور بیان کیا. بیان کرنے کے بعد آپ یقین مانیں رانا صاحب, میں نے جب بیان کے دوران کہا نا کہ ارے بتاؤ تو صحیح, ایسے عجیب لوگ تھے. ایک آدمی کہنے لگا ہمیں جواب دینے کی عادت نہیں ہے یہاں پر. میں کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ تم سے یہاں کسی کا سوال کیا ہی نہیں, جواب دو گے کہاں سے؟
آپ سے پہلے پوچھا ہی نہیں.
جواب تو دو یار, جواب تو دو کہ کیوں آخر مسلمان شراب پی بیچ رہا ہے, مسلمان شراب پی پی رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دے دیا, جو برائیوں کی ماں ہے, وہ کیوں مسلمان اس میں لگا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگلے روز پھر ہم نے شراب کے بارے میں کتابیں تھیں, مدر آف ایول یہ ہے کتاب برائیوں کی ماں, اور پیپر وغیرہ تقسیم کے. تو کافی وہاں ایک اثر پڑا کہ یار شراب ایک ایسی چیز ہے جس کو چھوڑا ہی جانا چاہیے. جی. لوگوں نے شراب کی دکان سے ریزائن کیا, دکان وغیرہ بند کی, اس طرح کی چیزیں کی. تو پتہ یہ چلا جو آپ کی طرف میں آ رہا تھا کہ آپ نے کہا یار اب لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا رب قرآن پاک میں فرماتے وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. میں آپ کو بہت سمپل کا سوال کرتا ہوں آپ سب سے. آپ کا نام؟
سرفراز. فاروق قریشی.
میرا نام بھی سرفراز وکی کے نام سے ہی, ویسے میرا محمد ایاز حیدر نام ہے
محمد,
اور میں آپ کے نام سے بھی, میری نسبت تو آپ کے نام کے ساتھ ہی ہے کیونکہ میرے مرشد پاک کا نام عمران ہے, سید عمران شاہ وارسی, اور میں وہ اس لیے بھی ذرا تھوڑا محبت سے آپ کو دیکھ رہا
ہوں. بہت شکریہ اللہ آپ کی محبت,
اور جو میں شدت لے کر آیا تھا وہ بھی
شاہ. چلیں آپ کی آواز تو سنیے نام سے.
اورنگزیب
لگاری اور رانا امجد رانا, کہ میں آپ سے جیسے سمجھانا آپ نے کہا ابھی آج مدنی مذاکرے میں آپ تھے, سنا آپ نے بیان سنا امیر سنت نے ایک بڑے واسٹ انداز میں اور بہت اسٹریٹ اور ایک بڑے مدلل انداز میں ایک بات کی. ہم بات سنتے ہیں ایک کچھ لمحوں کے لیے صحیح, بندہ غور کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ یار بات صحیح ہے, غور تو کرو, غور تو کرو. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو سمجھائیں اور وہ غور نہیں کرتا. بعض اوقات لوگ غور ہاتھوں ہاتھ نہیں کرتے, پیچھے جا کر کرتے ہیں, سامنے کہہ دیتے ہیں کہ یار لگتا ہے تم بھی مولوی ہو گئے ہو, یہ کہہ دیں گے. آپ جب سمجھائیں گے تو آپ کو یہ جملہ کہیں گے لگتا ہے مطلب لگا رہے صاحب آج کل مولویوں میں بیٹھنے لگے ہو, تو آپ بولو الحمدللہ تم بھی آ جاؤ. میں ایسا جب لوگ شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں شرماتے تو میں مولویوں کے ساتھ بیٹھنے میں کیوں شرماؤں گا بھائی؟ لوگ بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں شرماتے تو میں نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے میں کیوں شرماؤں گا؟ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی مذہبی طبقے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اس کو مطلب کہ بدقسمتی کے ساتھ کریٹیسائز کیا جاتا ہے, حالانکہ وہ کریٹیسائز کرنے والی جگہ ہی نہیں ہے.
بالکل
بھائی, چھوڑی برائی جاتی ہے, کبھی نیکی چھوڑی جاتی ہے؟
کبھی بھی نہیں.
بندہ مطلب کہ کوئی سود چھوڑتا ہے, رشوت چھوڑتا ہے,
جھوٹ
چھوڑتا ہے, کوئی نماز چھوڑتا ہے یا کوئی نمازیوں کو چھوڑتا ہے,
ایسا نہیں ہوتا.
چھوڑنے والی شے یہ نہیں ہے. اب چونکہ آپ جس کلچر میں وہاں پر اس طرح کی ڈسکشن کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں بنا, مطلب بات کرنے کے لیے یوں ہے نہیں.
آہستہ آہستہ یہ ایک فیشن بھی بن گیا, ایک خوبصورتی کا معیار یہ بن گیا,
گلیمرائز کر دیا گیا.
مطلب یہ بن گیا کہ دوپٹہ نہیں ہوگا تو عورت خوبصورت لگے گی, داڑھی نہیں ہوگی تو بندہ خوبصورت لگے گا, انگریز کا لباس پہنیں گے تو بندہ خوبصورت لگے گا. یہ ایک معیار بنا دیا گیا, اس کے ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ ایک واضح ہمارا کم از کم بر اعظم تو یہ ہے کہ یہاں انگریز آیا اور انگریز کی ایک حکومت رہی, انگریز ایک آئیڈیل بنا, صاف 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 ایک بن گیا. جب وہ گیا تو ہم سب صاحب بننے کی خواہش میں آئے.
اصل میں ان غیر مسلموں کو اپنی ہی تعلیم کے پڑھے لکھے لوگ ملازم چاہیے تھے.
بالکل
ٹھیک ہے, انہوں نے ہمارے اندر آ کر اپنی ہی تعلیم کو اور اپنے کلچر کو پروموٹ کیا.
بالکل,
اور اس کی اچھی سیلریز دی. ریلیجن جو سیکٹر ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی کہ یہ وہاں سے کٹیں گے, یہاں آئیں گے, ہمارے حال میں ڈھلیں گے اور ہم انہیں اچھی سیلریز دیں گے, انہیں اچھی مراد دیں گے, اور جب ان کو ہم مجبور کریں گے ٹھیک ہے ہمارے گٹ اپ میں آؤ تو تم کو یہ سب کچھ ملے گا, تو اکنامیکلی اور فائنینشلی طور پر مجبور ہو کر اس نے آنا ہماری طرف ہے. لیکن ہمیں اب یہ ریت بدلنی چاہیے.
ابھی تو آپ کی ریت بدل رہی ہے اس طرح سے کہ آپ کی اب انفلوئنس دوبارہ ہو رہے ہیں انگریز سے کہ ان کے حکم پر غالباً ہمارے سلیبس چینج ہو رہے ہیں. وہاں پہ صحابہ کرام کی بچوں کی کتابوں میں سے تاریخ میں سے
وہ ساری چیزیں لگانے کا مطلب آپ کی نظر اٹلی دیکھیے آپ کی نظر ہے.
جی جی جی.
اچھا اگر کوئی آپ کے گھر پر اس طرح کی کوئی چیز کرے تو ڈیفینیٹلی آپ کبھی گوارا نہیں کریں گے.
وہ تب نہیں کریں گے جب ہماری دلچسپی اپنے گھر میں ہوگی.
ہم کب تک اپنے معاشرے میں ہونے والی خرابیوں برائیوں کو ہم شولڈر ٹو شولڈر بڑھاتے رہیں گے؟
جی
دیکھیں شولڈر بلیمنگ یا بلیمنگ گیم جو اگر ہم کھیلیں گے نا یہ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے گھر میں میرے محلے میں گندگی ہے, میرے محلے میں گندگی ہے, میں پورا محلہ صاف نہیں بھی کر سکتا, سمجھتا اپنے گھر کے باہر کا حصہ تو صاف کر لوں کہ میں یہ کہہ کر کے یار کو صاف ہی نہیں کرتا, میں اپنے گھر کے باہر بھی گندگی رہنے دوں گا, یہ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اطراف میں آگ لگی ہے میرے گھر میں آگ لگی تو میں کم از کم اپنے گھر کی آگ کو تو بجھاؤں گا. تو میں اپنا جو رول میرا اپنا جو کردار ہے سوسائٹی کا جو میرا جو اپنا ایک سوسائٹی جو رول ہے اس کو تو کم از کم مجھے
درست
ادا کرنا چاہیے. اور ہمیں اپنی پوزیشن کو سمجھنا چاہیے.
بالکل,
اور اپنی پوزیشن کو سمجھنے کے لیے جو ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی جو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے دیکھیے کہ اسلام کس طرح
پروان
چڑھ رہا ہے اور نوجوان اور لوگ کس طرح آ رہے ہیں اور دین پر چلنے والے آج تک یہاں مطلب ایک اچھی خاصی تعداد میں ہیں. جب آتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہاں ایسا ہے. وہ ایک مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے غالباً ایک حکایت ایسے بیان کی ہے سمجھانے کے لیے, بات باتیں سمجھانے کے لکھی جاتی ہیں, کہ ایک شیر کا بچہ بکریوں میں پرورش پانے لگا. और वो बक्तियों में परवरिश पाते 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 वो थोड़ा बड़ा हुआ, जवान हो गया, और उसकी हरकत है बकरियों वाली की। अब वो बस इसी के साथ रह रहा है। एक दिन उसकी मुलाकात शेर से हो गई, वाक जो शेरों में था। अब शेर जो हुई तो वो शेर को देखकर भागे, शेर उसको देखकर परेशान कि ये तो मेरी बिरादरी का है, ये बकरियों में क्या कर रहा है, इसका काम तो इनको फाड़ना है, इसका काम तो इनके साथ रहना नहीं है,
रहना नहीं है,
तो ये इनके साथ क्या कर रहा है। अब वो शेर उस शेर के पास गया, तो तू इसके साथ क्या कर रहा है, तो क्यों, तो तू शेर है का, मैं शेर का हूं, तो बकरी तू बकरी तू शेर है, तो मैं बकरी हूं। वो समझ गया कहानी के है क्या, चल 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 पानी पीते हैं। वो पानी पीने के लिए उस शेर को तालाब पर ले गया, तालाब पर ले गया
बकरी शेर को,
हाँ बकरी शेर को तालाब पर ले गया, और तालाब पर ले जाकर कहने लगा चल पानी पी। जैसे उससे पानी पिया, उसने भी अपना मुंह अंदर डाला, उसने भी अपना मुंह अंदर डाला, जो दोनों ने अपना मुंह अंदर डाला, तालाब से दोनों का अक्स नजर आया, अक्स नजर आया तो उसने कहा कि मैं तो इसके जैसा हूं, तो उससे कहा मैं तो तेरे जैसा हूं, तो कहा मैं तो कहता था कि तू मेरे जैसा है, क्योंकि तुझे तेरा असल चेहरा ही नजर नहीं आया था, लिहाजा तू खुद को बकरियों में शुमार कर रहा था। तो जब हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आते हैं तो पता चलता है कि हमारा असल चेहरा है क्या, हमारा असल कैरेक्टर है क्या।
शो बिजनेस से मुझे स्ट्रगल टाइम भी लगा लें उसको, प्रोफेशनली तौर पे 12-13 साल से मैं प्रोफेशनल हुआ हूं। उससे पहले शो किया मामलात थे, सऊदी अरबिया रह गया मैं, सिंगापुर रह गया। इसमें समझाने का, जब हम अपने किरदार को बेहतर कर दें शो बिजनेस के अंदर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है, मुझ में तो वो ताकत नहीं है, मैं नमाज बाकायदगी से पढ़ता हूँ, कुरान की तलावत मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, कि अब मैं ये किरदार मेरा है, मैं चाहे उस बुराई के अंदर रहकर, उस समंदर के अंदर रहकर पाक साफ सीधा, उन क्योंकि हमारे शो बिजनेस में शराब
तो समुंदर ना कहें कीचड़ में रहे,
कीचड़ कुछ कीचड़ कह लें, अल्फाजों की गेम है, कीचड़ कह लें, उस कीचड़ के अंदर रहकर खुद को धोकर निकल जाता हूं। शराब वहां आम है हमारे शो बिजनेस में, लोग क्योंकि ब्रीफिंग्स कुछ ऐसी हैं, सब यकसा नहीं होते, शराब भी वहां आम है, जुआ भी वहां आम है, जिना भी वहां आम है, हर चीज सजी भी है, और मैं उस सजी हुई चीज से नजर फेर कर अपने घर चला जाता हूं कि यार ये मेरी ड्यूटी थी, मैंने अपनी ड्यूटी की,
बात पूरी हो जाए,
पूरी हो जाए बात।
असल में इन्होंने भी गेट खोला है, क्योंकि जब शुरू हुआ था तो मेरी बारी, जब आपकी बारी आई है,
इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि रिस्क तो आप, ये आप ईमान हमारा है कि रिस्क देने वाली रब की ज्यादा है, हमारी सोच है कि हम किस तरीके से लेते हैं, किस जरिए से लेते हैं, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। आपको, आप मुझसे सीनियर हैं, आपको,
आपका मौकिफ ये है,
ये है
मैं बोलूंगा
इमरान भाई, मेरा मौकिफ ये है कि मैं अगर उस किरदार में हूं तो मेरे साथ रहने वाली कुलीग्स, मैं जब उन्हें कहता हूं कि आओ यार नमाज पढ़ने चलें, वो कहता दादू मौलवी जा पढ़े यार नमाज, यार आओ मैं कुरान पढ़ रहा हूं आप भी पढ़ लो, ले हूं तू एंड कुरान सानू दसेगा कुरान पढ़ ली, अभी करके आए करो, हम तो ऐसा करते हैं, यार आओ जरा ऐसा कर लेते हैं, मेरा बेटा हाफिज कुरान है, मैं अपने बच्चों को जो तरबियत दे रहा हूं, मेरी बीवी बापर्दा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने घर से उनको बेपर्दा नहीं होने देता, मेरे घर के अंदर जो तरबियत है ये मेरा रिस्क है, मैंने कभी ये मेरा रिस्क, मैं अपने आप से जंग कर
रहा हूं। मैं कुछ
जी जी
आपका जो डिस्कशन है ना वो ये है कि मैं गुनाहों में हूं लेकिन मैं नीकियां भी करने की कोशिश करता हूं,
जी
ये आपका टोटल मौकिफ ये बनेगा
जी, और दोस्तों को भी कहता हूं
कि मैं दावत देता हूं। बीमारी का इलाज दो तरह का है
जी,
आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे कि मेरी बीमारी है उसका मुझे इलाज चाहिए, तो इलाज दो तरह का डॉक्टर देगा, एक है दवाई और दूसरी है परहेज, ठीक है
जी।
आप दवाई लें और परहेज ना करें तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, मिसाल के तौर पर अभी ठंडा ठंडा पानी, शुगर की गोली भी खानी है,
कई डॉक्टर तो ये भी कह देते हैं कि जो मर्जी खाओ सेट पर जरूर करो,
वो डॉक्टर के पास आप दूसरी बार जाते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो वैसे अस्पताल का रास्ता दिखा देता है,
तो अगर आराम से
वो एक लॉजिकल चीज है, लॉजिकल यही है कि इंसान जब कोई डिजीज का शिकार होता है, जैसे गले में दर्द है आपके
जी,
तो आपको डॉक्टर दो इलाज देगा, एक आपको मेडिसिन देगा, दूसरा को बोलेगा कि ठंडा पानी मत पीना, वरना आपका गला सही नहीं होगा। आप गोली खाओ ठंडा पानी भी पीते रहो तो ये आपका इलाज नहीं हो सकता। तो इलाज दो तरह के हैं। इसी तरह नेकी करना, जैसे कुरान पढ़ना, ये भी नेकी है, लेकिन गुनाह से बचना ये भी नेकी है।
सही है।
अब मेरी थोड़ी सी आप माजरत के साथ, मैं थोड़ा सा आगे एक कदम आगे बढ़ूंगा। आप अपने बारे में जैसा मुझे कह रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, है भी हयाई वाला काम, काम भी हयाई वाला है। नमाज में पढ़ रहा हूं, मैं भी हयाई से नहीं बच पा रहा। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं बुराई से नहीं बच पा रहा। कुरान कहता है कि नमाज बुराई से और बेहयाई दोनों से रोकेगी। मैं नमाज पढ़ रहा हूं लेकिन ना मैं बुराई से बच पा रहा हूं, ना बेहयाई से बच पा रहा हूं। मेरे रब का कलाम सच्चा है, इसका मतलब मेरी नमाज दुरुस्त नहीं है। मैं नमाज पढ़ने वाले को पलट करता हूं, मगर मैं उसकी नमाज दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि नमाज के फर्ज कितने हैं, जो भी जनरल जो पढ़ते हैं पता है नमाज की शराइत कितनी है, कुरान हम पढ़ते हैं पता है कुरान की कैरात कैसे होती है। यानी हम एक प्रोफेशन में आते हैं, आपको अपने प्रोफेशन के अंदर कितने सालों तक, कितने अर्से तक आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपकी लिपस्टिक सेट की जाती है, आपके आपकी बॉडी लैंग्वेज सेट की जाती है, आपको बहुत कुछ दुरुस्त किया जाता है, एक टीचिंग होती है।
बिल्कुल।
उसके बाद एक शागिर्द बनता है, शागिर्द के बाद फिर कभी वो जाकर कोई बनता है। लेकिन क्या कुरान सीखने के लिए हमने कोई ऐसा टीचर रखा जो इतने अर्से तक हमको कुरान सिखाता रहा? बल्कि इवन के मैं अगर लाखों नमाजियों, अगर मैं लाखों नमाजियों से ये पूछूं ना कि आपने नमाज कहां सीखी है, तो यही कहेंगे हमने नमाज सीखी नहीं है, हमने नमाज देखकर पढ़ी है। देखकर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, नमाज सीखकर पढ़ी जा सकती है।
और उसके लिए माहौल चाहिए,
उसके लिए माहौल चाहिए, उसके लिए टीचिंग चाहिए। भाई नमाज के लिए तहारत शर्त है, पाकी की शर्त है, गुस्ल फर्ज हो गया जनाब, गुस्ल करना है, गुस्ल के फर्ज कितने हैं गुस्ल करने वाले को नहीं पता, फर्ज उतरता कैसा उसको भी फर्ज उतारना नहीं पता, पानी कहाँ कहाँ पहुंचाना है, कहाँ कहाँ पानी पहुंचेगा, कौन सी जगह सूखी रह गई, क्या सूखा रह गया, मेरा गुस्ल ही नहीं होगा, मैं नापाक का नापाक ही रहूंगा। जब बंदा ही नापाक रहा, कपड़े नापाक रह गए, उसकी नमाज होगी कैसे?
हाँ,
बात समझ
कमजोर होगी, बिल्कुल
नहीं, कमजोर नहीं हुजूर लगा सर, नमाज ही नहीं। इजा फातर शर्त फातर मशरूत, ये एक इस्लाम के उसूल है, अगर शर्त फोत हो जाए मशरूत फोत हो जाता है। मिसाल देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूं, किबला इस तरफ है, इस वक्त किबला इस तरफ है, अब नमाज वहां मुंह करके पढ़े हो जाएगी?
नहीं।
क्यों? सारी चीजें पूरी यहां की, तहारत भी पूरी है, किरात भी पूरी है, नमाज कपड़े भी पूरे पहने आते हैं,
हुक्म है उधर नहीं है।
इस्तकबाले किबला, इस्तकबाले किबला यानी किबले की तरफ मुंह करना
दानिस्ता।
आपने एक एक शर्त छोड़ी, बाकी सारी शर्तें सारे फर्ज पूरे कर दिए, आपकी नमाज नहीं होगी। अच्छा दूसरी बात, जोहर का वक्त शुरू हुआ फॉर एग्जाम्पल 12:30 बजे, आपको जल्दी बहुत ही आपने 12 बजे जोर पड़ ली होगी। अल्लाह के अल्लाह ही के सज्जा किया, किबले की तरफ सज्जा किया, जोर की नीयत से सज्जा किया, नमाज नहीं होगी, क्योंकि आपने वक्त पर नमाज नहीं पढ़ी, कि वक्त पर नमाज पढ़ना ही नमाज की शर्त है। अब यही मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, इसी तरह किरात ये नमाज में फर्ज है, किरात कैसे करनी है ये हमने सीखा नहीं, सजदा 7 हड्डियों पर होता है, 7 हड्डियों पर सजदा होना कैसे ये हमने सीखा नहीं। असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहां इस प्रोफेशन के अंदर जो आपका प्रोफेशन, इसमें एक इस तरह के सेंटेंस आते हैं, क्योंकि हम भी एक अर्से से आपके प्रोफेशन वालों के साथ बैठते हैं, मैं तो नमाज नहीं छोड़ता। भाई अच्छी बात है नमाज नहीं छोड़ते, नमाज में क्या क्या छोड़ रहे हैं ये तो देखो।
खूबसूरत जुमला,
बहुत अच्छी बात।
जब नमाज में इतनी चीजें छोड़ी गई हैं तो नमाज तुम्हें गुनाहों से कैसे छुड़वाएगी? तुम अगर गुनाह छोड़ना चाहते हो तो नमाज में जो छोड़ रहे हो ना उसको छोड़ना छोड़ दो, नमाज तुम्हें गुनाहों से छुड़वा देगी।
सुभान अल्लाह। नमाज में कमी है,
नमाज में कमी हुजूर, नमाज में मिसिंग है, कमी और मिसिंग में भी फर्क है, एक चीज है ही नहीं। यानी आप बगैर कपड़े के नमाज पढ़ेंगे नमाज होगी? क्यों? कि सितर गए, सितर छुपाना जरूरी है।
बिल्कुल सही,
ठीक है,
बिल्कुल सही।
तो इसी तरह हमारी बहुत सारी चीजें मिसिंग है नमाज के अंदर।
बिल्कुल,
तो हम देखते हैं, आप देखें बच्चा खाता नमाजी आदमी है सूद खाता है, इतना बड़ा स्वामी कबाब का निशान बना हुआ है उसके पेशानी के ऊपर, सूद खाता है, एक नंबर का सूदी है, नमाज उसको सूद से नहीं बचा रही, नमाज उसको शराब से नहीं बचा रही, नमाज उसको बदकारी से नहीं बचा रही है। कुरान कहता है नमाज बुराइयों बेहयाई से बचाती है।
अल्लाह हू अकबर।
एक शख्स ने एक औरत पर कुर्बान हो गया, जो लट्टू हो जाते ना, एक बंद हो गया वो औरत पर लट्टू, उसने जाकर उस औरत को लेटर लिख दिया कि मैं मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है, तुझसे शादी करना चाहता हूँ। औरत परेशान, तो औरत थी शादीशुदा, इसका शोर घर आया, शोर था मस्जिद का इमाम, बीवी ने लेटर उठा शोर को दे दिया, अपने जैसा हो गया तो मुंह तोड़ कर आएगा। अब वो शोर था समझदार शरीफ आदमी था इमाम था, उसने औरत का लेटर लेकर कहा कब तू इसको लेटर ले, कहा क्या, मतलब तू इस फला मस्जिद के फला इमाम के पीछे 40 दिन तक नमाज पढ़, उसके बाद मुझसे बात करना। वो तो वैसे दीवाना हुआ पा रहा था, कहा चल 40 दिन ही की बात है ना। वो गया और इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़नी शुरू की, और इमाम साहब उसकी नमाज जैसे पढ़नी है पढ़ानी शुरू की। 40 दिन जब उसने नमाज पढ़ी, उसके दिल की आंख खुली, जिस दिल की आप बात कर रहे थे ना, उसके दिल की आंख खुली और उसके ये बात रियलाइज हो गई कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा था, मेरा रास्ता ये नहीं, मेरा रास्ता तो मेरे रब की तरफ है। उसने लेटर लिखा औरत को कि मोहतरमा मुझे माफ कर देना, मैं अंधा हो गया था तुम्हारी मोहब्बत में, अब मुझे मेरे रब की मोहब्बत मिल गई है, मुझे तेरी मोहब्बत की हाजत ना रही,
हाजत नहीं रही।
नमाज ने 40 दिन के अंदर अंदर उसको बुराई से बचाया। हुजूर जब बंदा सही नमाज पढ़ता है ना, ये कैसे हो सकता है कि वो सही नमाज है उसकी और वो बुराई में मुबतला हो, नहीं हो सकता। जिससे मिसाल के तौर पर अगर कोई सच्चा नमाजी है वो अपने आप को नापाक रखेगा
नहीं
रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं नापाक रहूंगा तो मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, नमाज के लिए तो पाकी जरूरी है। तो इसी तरह अगर वो सही नमाज पढ़ेगा ना,
नमाज शराब से रोक लेगी बुराई,
नमाज हुजूर हर बुराई से रोक लेगी।
मैं वो शराब मैं नहीं पीता, मैंने कभी नहीं पी जिंदगी में, जुआ मैंने नहीं खेला जिंदगी में, जिना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बचाया है, मुझ में ताकत नहीं थी, सामने तो सब कुछ होता, मैंने नहीं किया ना, आगे मैंने किसी को कहा और ना मैंने किसी की बात ऐसी सुनी कि मुझे कुछ सुनाने लगा है तो मैंने कहा छाड़ दिया कोई और गल करने, मैंने कहा छोड़ दो इस बात को, कोई और बात सुनाते हैं, क्या करना है इसको, मैंने ये चीजें नहीं की। मैं
अया साहब हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा जुर्म है माजरत के साथ, वेरी सॉरी टू से।
मैंने सिर्फ ये इतना पूछना है कि जो हम टेलीविजन,
मैं अया साहब वहीं आ रहा हूँ, मैं आपके पास मैं वहीं आ रहा हूँ, हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा जुर्म है ये, बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी ने ये गलत किया कि गुनाहों को कैटेगराइज कर दिया कि ये गुनाह बाकी नहीं है।
हाँ हाँ बिल्कुल,
मतलब अगर आप किसी लड़की का अपनी बेटी का रिश्ता लेने के लिए जाएं, बेटी का रिश्ता लेने के लिए जाएं, एक नौजवान से शादी हो रही हो और अब पता चले कि यार ये शराब पीता है, आप बेटी नहीं देंगे, ये जुआ खेलता बेटी नहीं देंगे, ठीक है, ये बदकारियां करता है आप बेटी नहीं देंगे, यार बदकार को कैसे बेटी देंगे, शराबी कैसे, अच्छा पता चले कि ये सूद खाता बेटी दे देंगे, देंगे नहीं देंगे।
मैं तो नहीं कमा कर दूंगा
आमदनी, मतलब पूछता ही कौन है मेरे भाई, यहाँ ये पूछा जाता है अय्याज साहब सॉरी लड़का कमाता कितना,
कमाता कितना है,
कहाँ से कमाता ये नहीं पूछा जाता, कितना कमाता ये पूछा जाता है, भले 4 दिन के बाद अथगड़ी होगी अंदर पड़ा होगा, ठीक है। सूद खाता है, माँ बाप को नहीं पड़ी कि बेटी सूद खोर के पास जा रही है, कमाता अच्छा है, रिश्वत लेकर घर चला रहा है, अफसरों के साथ राशि अफसरों के साथ बेटियों की शादियां की जाती हैं, और पता है कि इस सीट के ऊपर रहकर ये रिश्वत खाता होगा, अंदाजा होता है।
इनका सवाल क्या था,
मैं इनका सवाल की तरफ आ रहा हूँ,
वो अभी इमरान भाई वहां तक आए नहीं है, जो बात मैं पूछना चाह रहा
हूँ, करना चाहिए तमीज में ज्यादा चला,
नहीं तबलीग में मैं वो अपनी इसलाह के लिए पूछ रहा हूँ कि ये चीजें आपने मुझे फरमाया है इन्होंने, और एक क्वेश्चन बीच में आया कि स्टेज एक्टिंग करना, एक्ट ये गलत है, मैं काफी अच्छे से कर रहा हूं, मेरा एक रोजगार उससे वाबस्ता है, अब मुझे वो फीलिंग्स भी हुई चार दिन के अंदर मैंने इनसे सीखा।
सवाल करना
अगर ये वो बुराइयां अगर एक साइड पे हैं वो बड़ी बुराइयां हैं कि एक्टिंग करना बहुत बड़ी बुराई है उन पे हैवी एक्टिंग करना
बड़ी छोटी का पैमाना क्यों रख रहे हो
सर
उन्होंने कहा ना कि अच्छी की है वो बुरा है तो बुरा है
नहीं आप
मैं भी तेरी तरह नमाज
आप हमारे बड़े थे जब हम फील्ड में आए तो आपने हमें हदायत क्यों नहीं की
अस्तगफिरुल्लाह मेरी मेरी
अगर आप ये समझते हैं
जब हम जाएंगे कब्र में और आगे हिसाब होगा कोई ये नहीं कहेगा कि लगारी साहब ने आपको नहीं कहा था इसलिए आपको माफी जन्नत वह जाओ
एक हमारे सुन एक स्टेज ड्रामा पहले होता था मैं उस टाइम हम देखते थे स्टेज ड्रामा पहले होता था एक स्टोरी होती थी एक कहानी होती थी एक करेक्टर्स बनाया जाता था उसका अंजाम दिखाया जाता था वाइंड अप कि एक ये नशा करता है और इस नशे का वाइंड अप क्या है उसको एक मैसेज दिया जाता था छोड़ दो तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो शराब पी तो तुम्हें पता कि शराब के लिए वो एक उसको एक्ट करके दिखाया जाता था उसमें एक मैसेज कन्वे होता था पब्लिक तक जब हम लोगों का दौर आया तो वो कल्चर को फोर्स कर दिया गया था और टोटली उस स्टेज को कमर्शियल कर दिया गया था जिसमें नाच गाने को ये समझ लिया गया कि अगर गाना नहीं होगा ड्रामे में तो आप पैसा नहीं कमा सकते असल प्रॉब्लम कहां से हुई है जब आपने औरत को बेहया कर दिया स्टेज के ऊपर जब औरत को ये इख्तियार दे दिया उन बड़े लोगों ने जो हमारे ऊपर माफिया एक बैठा है जो कहता है कि अगर ये डांस नहीं करेगी इसके लिए आपने क्रिएशन करनी है वो सीन वो सीक्वेंस लाना है डांस के लिए आप एक्टिंग छोड़ दें यार ये क्या मैसेज देना है आपने मैं राइटर हूं मैं डायरेक्टर हूं मैं लिखता हूं मैं 2.5 साल से डायरेक्शन कर रहा हूं मैं कई दफा इस बात पे लड़ा हूं कि यार मैं इसमें ये देना चाह रहा हूं आप कह रहे हैं चित्रारी दिखाओ भाई मैं तो नहीं ये दिखाऊंगा मुझे उन्होंने निकाल दिया कि यार हो डायरेक्टर रख लो ये तो बात ही नहीं हमारी मान लो ये तो कह रहे नहीं वो कह रहे 18 गाने दिखाओ मैं कह रहा हूं मैं नहीं दिखाने
कुरान करीम
में इसमें
मैं तो नहीं बोल रहा
इन चीजों में
बात यह है
खराबियां पैदा हुई
हैं मैं उनको सुनना चाह रहा हूं मैं उनको सुन रहा हूं 2 घंटे से वो बात ही इतनी तमीज बांध
रहे हैं उनसे इस्तफादा हासिल करना है हम मदनी चैनल पे आए हुए हैं हम तो आर्टिस्ट हैं हम एक दूसरे को अगर खुद ही कही जाएंगे मैं नमाजा पढ़ना मैं ऐ करना मैं ये तो कोई बात है ही नहीं
हाँ बिल्कुल
लेकिन बात है हमने आपसे इस्तफादा हासिल करना है आपने हमें दीन की बात बतानी है हमने उसको फॉलो करना है हम तो जो है हम तो एक्सपोज लोग हैं हम तो एक्सपोज हैं
तो राइटर
हम तो ओपन बुक हैं हमें तो हर आदमी जानता है हम क्या करते हैं
बेशक आप तो माशाल्लाह राइटर हो
हमने आपसे इस्तफादा हासिल करना है कि आपने हमें बता दिया जाए कि
मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं
कैसे सही कर लें अपने आप
देखें कोयला धोने नहीं बैठा कोयला नहीं धुलता
बस
अब कोयला धोने बैठे हो कोयला धुलेगा नहीं ठीक है कोयला छोड़ें जन्नत का रास्ता लें माशाल्लाह ठीक है कीचड़ में रहकर आप मुझसे ये फार्मूला पूछो कि मैं कीचड़ में चलना चाहता हूं तो मुझे छींटे से बचने का तरीका बताओ मैं नहीं बता सकूंगा आप बोलो कि मैं डुबकी लगाना चाहता हूं पानी में मेरे बाल गीले ना हो मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है आप बोलो मैं दीवार में सर मारूंगा मुझे दर्द ना हो मेरे पास का कोई फार्मूला नहीं है ठीक है सिंपल सी बात है दो रास्ते हैं एक सही है गलत है अच्छा इसमें कोई दो राय ठीक है आदमी बादों का खुद से भी सच नहीं बोलता हकीकत यह है कि आदमी जानता है कि जो कर रहा है वो गलत है
सही है
और गलत चीज छोड़ी जाती है गलत चीज रखी नहीं जाती जो चीज खिलाफ शरा है उसको छोड़ दें
सुने ठीक है सुने अभी आपने इस चीज को क्यों अडॉप्ट किया है क्यों किया आप मौलवी क्यों नहीं बन गए मुझे जवाब दें
देखिए ये ना ये
आप क्यों मौलवी बन जाते बिल्कुल सही ये तो आपने उन आम औरतों की बात कर दी है जो तू रो रही होती मैं तू क्यों कर रही है तू मशीन लेके महल्ले दिए औरतों कपड़े थी रिस्क हलाल कमा तो ये आप बात मत करें कि हमसे पहले लोग गलत थे या
अब मैं उसकी तरफ आता हूं कि देखिए हर कोई अपना जवाब दे आप जब इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि ये बात गलत है ये तरीका गलत है ये रास्ता गलत है आप इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि हमें सच्ची तौबा की तौफीक नसीब हो जाए हम इसको छोड़ना चाहते हैं
अच्छा,
इसकी आमदनी भी गलत है देखिए नाजायज काम की आमदनी भी नाजायज जायज काम की आमदनी भी जायज
बेशक
ये चीजें दुरुस्त अब امیر سنت نے جب مرضی مذاکرے میں فرمایا تھا نا وہ سب سے بیسٹ وے ہے بولڈ اسٹیپ. اب بھی اگر ہم بولڈ اسٹیپ نہیں لیتے یعنی اب بھی ہم وہی ہیں جہاں سے ہم چلے تھے تو پھر کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں کوئی تو میں خود چاہتا ہوں پچھلے دنوں ابرار الحق اور ذوالقرنین حیدر اور اس طرح کے جو دو چار اور آرٹسٹ ہیں وہ بھی تھے ان کے ساتھ بھی مدنی مقام ڈسکشن ہوئی تھی بیڈ وادا ان کے ساتھ بھی میں نے ایک ڈسکشن کی تھی کہ یار یہ بتائیں کہ جب آپ کو کوئی انٹرویو لیتا ہے میں نے بعض کلپ دیکھے انٹرویو لیتا ہے اور آپ کی شہرت کی اور آپ کی اس کی کیونکہ نام دیکھیں نام ہونا ہے نا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی. نام ان کا بھی ہے جن سے آپ لوگ نفرت کرتے ہیں. ایک مسلمان نفرت کرتا ہے ان کے بھی نام ہوتے تو ہم نفرت کر رہے ہوتے ہیں نا. تو شہرت یہ کسی کامیابی کی دلیل نہیں ہے
بے شک.
ٹھیک ہے تو جب آپ سے کوئی انٹرویو لیتا ہے اور آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ تو یوں تو آپ بولتے ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے مطلب
بالکل
آپ اس کو اپنی اس گندگی کو اس برائی کو اللہ تعالیٰ کا احسان کہہ رہے ہو
یار.
یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ بندہ نماز قضا کرے بولے کہ آپ نے نماز قضا کر دی اللہ کا احسان ہے میں نے نماز قضا کر دی ہے.
بالکل
ایسا تو کوئی بھی نہیں بولے گا یار. لیکن کم از کم یہ کلچر تو آپ اپنے میڈیا سے نکالیں کہ جو خرابی ہے اس کو تو اپنے رب کی طرف منسوخ نہ کرو. دیکھیں کتے کو کس نے پیدا کیا اللہ نے, سور کو کس نے پیدا کیا اللہ نے. کبھی ہم کہتے ہیں کتے کے رب یا سور کے رب, اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے کلمات سے یاد کرتے ہیں اس طرح کہ اے رب کریم, اے رب رحیم, اے موسیٰ کے رب, اے رب عیسیٰ. ہم اللہ کے نبیوں کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کا نام لے کر. تو مطلب اپنی گندگی کو یا اپنی برائیوں کو اپنے رب کی طرف منسوخ کر دینا یہ بے باکی ہے. آپ چاہیں دیکھیں آپ اول تو یہ فیلڈ ہی چھوڑنی ہے
انشاءاللہ
آج ہی چھوڑنی ہے. اللہ کرے چھوٹ جائے. اور انہوں نے بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کی لگاری صاحب نے لائیو بات کی تو ڈھکی چھپی نہیں ہے بھائی روزگار کا مسئلہ ہے تو ہمارا روزگار یہ لگا ہوا ہے اس کے بھی راستے ہیں. اور امیر سننے نے بہت ٹو دی پوائنٹ آپ سے بات کر دی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جب تک کو حلال رزق نہیں دے گا میں اپنا یہ راستہ چھوڑوں گا نہیں. یہ بھی درست نہیں ہے. دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے.
مشکل بات کی
مشکل ہے حضور لگائی صاحب لگائی صاحب ایمان کے کامل ہونے پر ہے انحصار. اللہ ہمیں ایسا ایمان کامل نصیب فرمائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک ڈاکو
کامل ہو نا پھر میں یہ سوال ہی نہ کرتا.
لگائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکو ڈاکہ ڈالا ہوا کہیں جا کر اسے پڑاؤ کیا آرام کرنے لگا جب لیٹا تو درخت پر نظر پڑی. ایک درخت سے ایک پرندہ اڑتا ہے دوسرے درخت پہ جاتا ہے دوسرے درخت پہ جاتا ہے وہ سوکھا ہے اور جس پر یہ بیٹھتا ہے وہ ہرا بھرا ہے. پھر اڑ کر ہرے بھرے پر آتا ہے پھر اڑتا ہے پھر سوکھے پہ جاتا ہے. اور وہ ڈاکو اس کو حیرت کہ یہ ماجرا کیا ہے. وہ سوکھے درخت پہ چڑھا دیکھا تو اتنا بڑا سام اتنا بڑا منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے. اور دیکھا کیا کہ وہ پرندہ چڑیا یا جو چڑیا تھی غالباً وہ ہرے درخت پر جاتی دانا چکتی اور اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈال دیتی. وہ سانپ اندھا تھا.
سبحان اللہ
درخت سے نیچے اترے اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ تو جب ایک اندھے سانپ کو رزق دے سکتا ہے میں تو اشرف المخلوقات ہوں مجھے رزق نہیں ملے گا.
سبحان اللہ
توبہ کی ڈاکہ چھوڑا اور اللہ کی راہ میں چل دیے. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ سنیے. کچھ بزرگ نیکی کی دعوت دینے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے تھے. پرانا واقعہ بزرگوں کا دیکھا تو ایک شخص آگ کو پوج رہا تھا پرستش کر رہا تھا. اس کو انہوں نے تبلیغ کی اسلام کی دعوت دی اللہ کی وحدانیت کا بتایا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی چل دیے. چلو سفر پورا ہوا تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے کہا اب ہمارا سفر تو اس طرف ہے آپ اپنے شہر کی طرف چلیں. تو ٹھیک ہے انہوں نے کچھ جیب سے رقم نکالی کہا کہ یہ لیجئے راستے میں آپ کے کام آ جائے گی. تو وہ مسکرا دیے جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا مسکرا دیے. وہ کہا کہ آپ عجیب لوگ ہو جب میں اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہا تھا اس وقت بھی میرا رب مجھے رزق دے رہا تھا آج میں رب پر ایمان لے آیا تو میرا رب کیا مجھے بھوکا مارے گا.
سبحان اللہ.
ارے بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم تب بھوکے نہیں مرتے
بلکہ لاکھوں ہم ملتے ہیں.
اور جب رب کی نافرمانی کر چھوڑ کر فرما بردار بنیں گے تو کیا بھوکے رہیں گے. نمبر ایک. اب یہاں ہے آزمائش، دیکھیں آزمائش. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفار ظلم و ستم کا نشانہ بناتے نا، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ بلال اپنے رب کو پکار، تیرا رب تجھے بچاتا کیوں نہیں ہے؟ تو فرماتے کہ تم برتن لینے جاتے ہو تو دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے کہ برتن کچا ہے کہ پکا ہے؟ میرا رب بھی بلال کو ملاحظہ فرما رہا ہے کہ بلال کا ایمان کیسا ہے.
ایسی مثالیں کہاں وہ ہماری ذات اللہ اللہ.
دیکھیں میں فرض کرتا ہوں یہ بھی ایک داؤ ہے جب کھیل گئے، آپ بھی کھیل گئے، یہ معاشرہ ہے، کلچر ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی بات تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن سرکار کی شان تو جدا ہے نا. ہمارے نبی پاک کے مقام و شان تو سب سے اعلیٰ ہے. قرآن میرے نبی کے لیے فرما رہا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنۃ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین پیروی ہے. تو ہمیں تو رسول اللہ کے پیچھے چلنے کا کہا جا رہا ہے، میں تو صحابی کی بات کر رہا ہوں.
نہیں وہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہوا ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہے کہ میں ہوں یا یہ جیسے بچہ ہے ان کا، بالکل ہماری ایک ہی کچھ مل رہی ہے برین ویو،
تو وہ دیر تک بات بھی آپ ہی دونوں کر رہے ہیں، اللہ بھی چپ
بیٹھا. نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہوا کہ یہ بھی غالباً اور میں بھی، ہم بھولپن میں، بچپن تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے ایکٹنگ تو کیا ہے دین تو کیا ہے. وہ اس عمر سے ہم نے یہ کام کا شوق پڑ گیا. شوق کیوں پڑا؟ اس میں ظاہر ہے دنیاوی شیطان ہے، دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، یہ کچھ دیکھتے تھے، اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ کام ہے. اس نے اٹریکٹ کیا، شیطان حاوی ہے، ہم کام شروع ہو گئے. اب ہمیں اس بھولپن میں آنکھ ہی نہیں کھلی آپ کی دنیا میں، باہر دیکھے کچھ نہیں، اور اس کام میں لگ گئے. ایک شوق ہے شہرت اور ایک بڑی ستائش، معاشرہ ہی ایسا ہے، سلام کرنے لگ جاتا، آٹوگراف لینے لگ جاتا، تصویریں آ رہی، دنیا میں مشہور ہو، ساری دنیا میں ہی مشہور ہو گئے یہ سیٹلائٹ کی وجہ سے. اس قدر شہرت، وہ ایک بڑا ہی اندر سے ایسی تقویت ملتی گئی اور وہ عمر بڑھتی گئی. اب شعور بالکل جو ہے نا وہ ہمارا ادھر ہی رہا، اپنے کام میں اس طرف آئی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا. اب کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا آپ نکل پڑو، آپ کے لیے بڑا آسان آپ کو لگتا ہے کہ یار بس چھوڑ دو، ڈیورس ایوری تھنگ اینڈ اس طرف آ جاؤ تو پکڑ لو. وہ اب ہمارا یہ عالم ہے کہ سمم بکمم ہے، دنیا کا پتا نہیں ہے، بالکل نہیں پتا. میں نے کیا، یہ بچہ بھی یہی سوچتا ہوگا، ہمارے ایک سٹیٹس ہے، لاکھوں روپے ہمیں مل جاتے ہیں یہ چند دنوں کے، ایک عزت کی زندگی ہے، آرام کی زندگی ہے، بچوں کا ایک اسٹیٹس ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ گزر رہی ہے. اب جب عقل آئی کہ یہ سب گند ہے، اب یہ پتہ بھی چلا سب گند ہے، اس دوران پچھلے کوئی 10-15 سال سے، میرے 50 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، 15-20 سال سے میں نے پھر کوشش کی کہ یہ چھوڑ دوں. میں جب آیا دنیا کے اندر، یہ ابھی میں نے ذکر بھی کیا تھا، جب اس دنیا میں میں آیا تو میں نے ایک فیکٹری کھولی، ایک ہوٹل کھولا، پھر بعد میں کچھ سال بعد پھر ایک گاڑیوں کا شو روم کھول لیا دبئی جا کے، سارا کچھ پیسے ادھر کر ادھر کر جو تھا پونجی لے کے بھائیوں سے ادھر سے ادھر سے میں نے جا کے وہاں. دنیا میں جب گئے ہم تو دنیا تو سانپ ہے، ظاہر ہے ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا، ہم نے کسی کو پارٹنر بنانا تھا، چلے پیسہ میرا ہے تمہیں یہ کام آتا ہے یہ کرو، تم آدھا لے لو یار، آدھا ہی ہمیں دے دو. 10,000 کا بندہ ہے، اس کو ہم نے کہا 50,000 تمہارا، ہمیں تم یہ کر. وہ جو بندہ آیا، یعنی یہاں تک آیا کہ ایک بندے کی 6 بچیاں تھیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بےچارا غریب آدمی تھا، میں نے اسے فیکٹری کھول کر دے دی. وہ بندہ بھی ایسے ہی میں نے دیکھا کہ وہی کھا رہا ہے، فیکٹری گیا ہوں دیکھا بھائی کیا ہوا، 70-80 سال اس کی عمر تھی. اور وہ بندے کو میں نے کہا تیری اتنی پوتیاں پوتیاں شادیاں کرنی تھی تم نے، یہ کیا بےمانی تم نے کرتی؟ کہتے صاحب شیطان آ گیا. یہ آگے سے جواب سے
لگا نہیں صاحب،
سر ایک نہیں کنزیکٹو تین چار، دنیا اتنی سنگ دل ہو گئی ہے.
آپ نے بھی 50-60 سال کی اپنی ہسٹری میرے سامنے بیان کہ کیسے چھوڑیں.
ہاں آپ ساری چیز کو ڈیورس کر رہا ہے،
ڈیورس کا لفظ استعمال کیا نا، وہاں سے میرے ذہن میں ایگزامپل آ رہی ہے، اگر آپ کہیں تو میں کہیں اچھا ڈیورس کیسے دے دے آدمی، کیسے چھوڑ دے،
پریشر دیں
کیسے چھوڑ دے. ٹھیک ہے، ایک عورت کے ساتھ آپ کا شادی ہو گئی، 50 سال کے بعد پتا چلا کہ یہ تو ویشیا تھی، بے وفا ہے، تو مجھے مروا دے گی، क्या करेंगे?
दूसरी कर लेंगे,
डिवोर्स नहीं करेंगे
हम दूसरी का पहले
डिवोर्स करेंगे वो जज्बात में आकर तलाक दे देंगे तो तू इस काबिल ही नहीं कि तू मेरे साथ रह सके। जब ये दुनिया की हकीकत आपके सामने खुली है तो ये काबिल है कि आप उसके साथ रह सके?
बिल्कुल सही,
डिवोर्स करें
वो बिल्कुल सही।
और आए यहाँ पर हम आपको मधुर माहौल के अंदर लेते हैं, आप बोले कि यार यार ये को जिंदगी है, यानी आप ये देखिए लगारी साहब या यार साहब या आप जितने भी आप हैं, आप लोग क्या समझते हैं? आपको देखकर हो सकता है लोग एक्टर बने हो सकता है कि आपको देखकर लोग एक्टर बने हो,
तो लोग बने।
आपको देखकर लोग आपको ना आपकी तरह को स्टाइल मारे हो,
हाँ जी,
आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपको देखकर कोई मजहबी बन जाए, आपको लगता है कि मैं आ गया, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह करे कि ये कोई कबूलियत की घड़ी हो,
आमीन,
और आप कह दें कि ठीक है यार मैं छोड़ता हूँ और आप एक इसका एक करते हैं, क्या ये नहीं हो सकता? आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार ये मतलब यार ये 50 साल तक ये शख्स जिस मीडिया की फील्ड में रहा और उसे छोड़ दिया, यार मुझे भी छोड़ना ही चाहिए।
बिल्कुल।
और आपको एक अगले ही लम्हे पता चलेगा फना 60 साल पुराना था आपकी फील्ड का, आपको देखा उसने भी छोड़ दिया, कोई तो स्टार्ट लेगा नहीं लेगा लगारी साहब?
वो हमें देख रिएक्ट जरूर करेगा,
कोई तो स्टार्ट लेगा,
ऐसा होगा।
और क्या पता कि उसके बाद लगारी साहब, क्या पता उसके बाद का जितना बदलना है वो बदलना आपके नामा अमल में नीकियां दाखिल करवा दें। जितने आज तक हमने गुनाह नहीं किए, देखिए गुनाह क्या है, गुनाह अपनी जगह पर है, गुनाह बहुत खतरनाक चीज होती है, मगर अल्लाह की रहमत से तो बड़ा नहीं है ना गुनाह हमारा।
बिल्कुल।
वो एक लम्हे में हमारे 60 साल के गुनाहों को लम्हे भर में माफ कर दे, उसको किसने रोका है? उस रब को किसी ने नहीं मना कि वो कादिर है, वो रब है,
बेशक
सच्ची तौबा वाला बंदा अल्लाह माफ कर देता है, लम्हे में माफ कर देता है।
सच्ची तौबा तो हमने कर ली, इस काम से नहीं होती। आप कसम खा सकते हैं हमारी, झूठ फरेब शराब जुआ
फ्रॉड
चर्च फवीन किसी किस्म की आप हमारी कसम खा सकते हैं।
एक्टिंग से जरा थोड़ा
हमारी ये आप
नमाज में सर आपने लत और एक्सपेंसिव से तौबा कर ली है, इनकम से तौबा नहीं की है,
जमा
मुश्किल आपने आप जो लतें लगी थी ना,
बड़ी समदिल है दुनिया,
जो लतें लगी थी वो लतों में बड़ी जिल्लत होती है। बंदा माशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं लेता, ऐसी लतें ले लेता है। आदमी बुरे काम दो वजह से छोड़ता है, एक अल्लाह से डरकर छोड़ता है, एक दुनिया की जिल्लत की वजह से छोड़ता है। दुनिया में जलील हो जाए,
दुनिया तो हमें इतनी इज्जत देती है
हुजूर, दुनिया
हुजूर
यहाँ दुनिया जो है ना जो बहुत बड़ा सूदखोर होता है ना उसको भी चीफ गेस्ट बनाती है। जिसने अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग की होती है ना वो भी हमारे चीफ गेस्ट बनकर बैठा रहता है, लोग उसके लिए भी तालियां बजाते हैं। ना तालियां बजाना जायज है ना ऐसे को इज्जत देना जायज है।
नहीं नहीं वो अपनी तरफ से इज्जत दे रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम पे असर नहीं हो रहा था। अब हमारी ये कैफियत है कि कोई इज्जत देता है हम झुक ही जाते हैं कि अल्लाह ताला को पता नहीं ये इज्जत कबूल भी है या नहीं। इसी
आप जो है ना
आजकल जो दौर चल रहा है उसमें वाकई नहीं दे रहे होते, यानी वो जरिया ढूंढ रहे होते हैं।
देखिए मैं आपको कुछ ऐसी सूरत आप लोग बनाएं, आप जो भी इस वक्त हैं ऐसी सूरत बनाएं कि कोई मदनी रेवोल्यूशन आए और मतलब कि लोग आपके यहां से निकलकर दीन और मजहब की तरफ आए, नेकी की तरफ आए, परहेजगारी की तरफ आए। एक मरतबा अगर ये देखें इस वक्त जो है ना ये आप यूं हैं, आना थोड़ा मुश्किल जगह आपको चढ़ना, लेकिन आपका वजन अगर इधर पड़ गए ना एक दिन तो ये रास्ता यूं हो जाएगा, ये जितने पीछे पड़े ना सारे नीचे आ जाएंगे।
ये इतना एहसास तो हमें है, मेरे अक्सर आपने नहीं देखे होंगे, मैं अक्सर इंटरव्यूज में बुलाते हैं लोग शोज में, ये जो मॉर्निंग शोज होते हैं इवनिंग शोज होते हैं अक्सर मुझे बुलाते हैं और अक्सर वो सियासत वगैरह डिस्कस करते हैं और पाकिस्तान के हालात के बारे में खुसूसन बात करते हैं। आपका क्या ख्याल है आजकल जो हो रहा है लगारी साहब, इस बारे में क्या कहेंगे पाकिस्तान के सियासत के बारे में कुछ भी? तो हमेशा मैंने यही कहा है और मेरे ख्याल पिछले 30-40 साल से कहा कि ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है वो दीन से दूरी की वजह से हो रहा है।
बैठकर एक घंटा मुल्क की हालात पर तबसरा करेंगे तो लोग मुल्क को तोड़ने में लगे, जब निकलेंगे बाहर सबसे पहले मौसम खुद ही सिग्नल तोड़ के जा रहे होंगे। मरने के बाद पर गौर करें आप।
जी जी,
हमारी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं मरने के बाद ये हमें पॉजिटिव दिखाएंगे या नेगेटिव दिखाएंगे? अल्लाह ताला ने सूरह हशर में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, हर जान जाने, हर जान देखे कि कल के लिए क्या भेजा
इमरान साहब, के लिए आपकी गुफ्तगू से ना आज जो बॉटम लाइन हम सबको मिली और मिलनी चाहिए मेरा ख्याल है, वो ये है कि हमारी जैसे हम समझते हैं कि मेरी जैसे 45 साल मैं अपनी नमाज कजा मैंने नहीं की या 15 साल मैंने कजा भी पढ़ी है, और ये जो आज की गुफ्तगू से जो मुझे सबक मिला वो ये मिला कि हमारी नमाज ही सही नहीं है,
अमल में कमजोर है, और अमल की कमजोरी को दूर करना जरूरी है, ईमान की कमजोरी को दूर करना जरूरी है। याद रखिए जब इंसान पर नजा का वक्त आता है ना तो शैतान माँ की और बाप की सूरत में आता है, सही हदीसों से साबित है।
अच्छा,
शैतान माँ और बाप की और दोस्त और अहबाब की सूरत में आता है नजा के वक्त, और आकर कहता है कि माँ और बाप की सूरत में आकर कहता है कि देख यहूदी मजहब अच्छा है, तू यहूदी हो गया, हम तुझसे पहले दुनिया से चले गए, या कहेगा कि ईसाई मजहब बचा तो ईसाई हो जा। ये नजा के वक्त, मौत के वक्त ये इम्तिहान है जो बंदे पर पड़ता है, क्योंकि शैतान का टारगेट है मुसलमान का ईमान बर्बाद करके ये दुनिया से जाए, यानी ये शैतान का टारगेट है कि ये मुसलमान का ईमान जाया हो जाए जब ये दुनिया से जा रहा हो। अब ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट है और ये अपने सारे मतलब के दाव लगा देता है, दोस्त आते हैं ये आते हैं, अल्लाह ताला की जब बंदे पर रहमत होती है ना उसका ईमान बच जाता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं क्या आपके हम सब के बारे में गौर करें, इतनी टफ फाइट है लास्ट मोमेंट पर, फाइनल राउंड है ये, 14वां राउंड है ये एक तरह से, एक फाइनल राउंड है, बंदा थक जाता है यार, नजा का आलम है, सर में दर्द हो तो किसी की बात समझ में नहीं आती, नजा की सख्ती और रूह निकल रही होगी। इस हालत में शैतान आकर हमसे लड़े और हमें उसे लड़ना अपने ईमान से, हाथ से तो लड़ना नहीं है, लड़ना ईमान से, और हम मौत की दहलीज से जब पहुंचे तो हमारा ईमान कमजोर है, हाउ कैन यू, हम कैसे लड़ेंगे उससे? और उस टाइम पर उसने अगर हमको पछाड़ दिया, गिरा दिया, ला ना करे ला ना करे, हमारा ईमान जाया हो गया, ला ना करे, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। तो याद रखिए जो ईमान जाए करके दुनिया से जाएगा उसके लिए जन्नत नहीं है, अल्लाह ने जन्नत सिर्फ ईमान वालों के लिए बनाई है,
और ईमान की मजबूती जैसे आपने फरमाया वो नमाज के, हम नमाज पढ़ते हैं अदा नहीं करते,
लेकिन
वो बात जो जैसे उन्होंने कहा ना कि
नमाज कायम करो,
कायम करो, वो नहीं होती, हम बस यूं होते हैं,
इसके लिए आप क्यों डिले करें, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, जब आप एक चीज को रियलाइज करते हैं
बिल्कुल,
तो लेट्स चेक,
बिल्कुल अभी शुरू हो जाए,
कोई अर्ज नहीं है,
बिल्कुल
हमारे मोबाइल लेकिन आपके साथ है, कोई जरूरत नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है,
नमाज का तो पता ही है, हम खुद गफलत करते हैं,
नहीं ये नमाज दुरुस्त करने का कह रहा हूँ
जो है
कि नमाज दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट चलना पड़ेगा कि गुस्ल फर्ज कब होता है, ठीक है, फिर गुस्ल फर्ज हो जाए तो उतरता कैसे है, अच्छा कपड़े नापाक हो गए तो पाक होंगे कैसे, अब जब नमाज के लिए आए तो फिर वुजू करना कैसे, अगर वुजू करने की हाजत है तो वुजू के फराइज कैसे अदा होंगे, फिर वुजू का तरीका सीखें, उसके बाद आए फिर नमाज के लिए जब कयाम करना है फिर नमाज पढ़नी कैसे है, फिर नमाज के अंदर जो किराअत करेंगे वो पढ़नी कैसे है, सूरह फातिहा कैसे पढ़नी है, दीगर सूरतें कैसे पढ़नी है, तस्बीहात कैसे पढ़नी है, तहिय्यात कैसे पढ़नी है, ये सब जब तक ये पूरी सीखेंगे नहीं, एक बार सीख तो लें, ये मतलब ये 2 घंटे का काम है,
ये कमियां तो हैं,
मैं नहीं कहता कि 2 घंटे के अंदर नमाज दुरुस्त हो जाएगी,
बिल्कुल सही,
एक लिस्ट विद इन 2 आवर इंशाल्लाह आप पर ये चीज डिक्लेयर हो जाएगी कि मेरी कमजोरी कहाँ है, जब तक कमजोरी डिक्लेयर नहीं होगी आप कमजोरी दूर कैसे करेंगे,
बिल्कुल सही फरमाया आपने, कमियां वही कमियां,
पार्किंग हो रही है कहीं,
तो आज ये स्विच लगा देते हैं,
स्विच लगा दें बस, हाँ
मेरे ख्याल
मेरे ख्याल से 4 दिन से
मजदूर के जरिए,
आप कब तक हैं यहाँ, कब तक हैं,
मैं तो आज जाऊंगा 4 दिन, मैं तो इनके साथ, वो आज मेरी वापसी है,
कितने बजे,
2 बजे,
2 बजे
अनीस साहब मेरे ख्याल से, अनीस भाई
हनूस 2 दूर है, तो अभी तो बहुत दूर है, दो आप अगर आप कब तक,
मैं 6 बजे निकल जाऊंगा, 8 बजे की फ्लाइट है,
आपकी भी?
नहीं, मेरी शाम को।
कोई ऐसी सूरत बनाए मुबल्लिगीन यहाँ बैठे हैं, कहता रहा जैसे हम रिकॉर्डिंग पर हैं, क्या है? हम तो बैठे तबलीग के लिए, नेकी की दावत के लिए, हमारा असल फिर तो नेकी की दावत।
ये तो मेरे समाचार लाहौर में है।
और इमरान भाई, कैसी बात है कि मैं तीन चार दिन से ये माशाल्लाह बड़ा प्यार मोहब्बतें या तो वो रहमतें और बरकतें ही इतनी हैं कि ऐसा कि मैं अगर ऐसे लेटा भी हूं ना, तो ये नीत भाई देख रहे हैं और ये मुझे कहते रहे नीत भाई कि यार थोड़ा सा लेट जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो अभी, फिर ध्यान। इनका कोई बात नहीं,
फिर भी अकल नहीं आई थी
पाकिस्तान में। इमरान भाई बड़ी बदनसीबी है पाकिस्तान के अंदर ना, पाकिस्तान में आर्टिस्ट ना 40 साल की उम्र के बाद जाके हिट होता है। बिल्कुल ही
देखिए, आप लोग आर्टिस्ट हैं, आपको आप लोग
40 साल एज होगी।
मीडिया कैरियर आपका जब बंद होता है, आप आर्टिस्टों का नॉर्मली तौर पर क्या हाल होता है, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो ये कहते ना, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।
चलें, आप अब दुआ कर दें आज के, कोई हमें
अल्लाह हमें नेकी पर चलना नसीब करे,
ऐसी छत दे दे जिसमें हमें ना घर से कोई निकाले ना।
देखिए,
ऐसी दुआ करें अभी तो
घर को कब्र को समझो ना।
नहीं, हम छुप कर ढक कर बच्चों को,
अल्लाह करे कि हम नेकी और परहेजगारी के रास्ते पर चलें। देखिए, नेकी और परहेजगारी के रास्ते पर चलें और हकीकी मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे नेकी और परहेजगारी करने और उस पर साबित रहने की तौफीक अता करे, क्योंकि पता नहीं कब किसके लिए कौन सा वक्त आ जाए, कौन गुनाहगार या कौन दीन से दूर कब दीन के अंदर आ जाए और कौन दीन पर चलने वाला दीन से दूर हो जाए। ये अल्लाह ताला की बेनियाजी है, हम में से किसी को भी तकब्बुर लायक नहीं है। ठीक है कि मैं अच्छा ये बुरा, मैं अच्छा ये बुरा, अच्छा वही है जो ईमान सलामत लेकर गया, जिसका खात्मा अच्छा हुआ। तो और हम नहीं जानते कि हमारा खात्मा कैसा होगा, लिहाजा मैं आपसे जो फाइनली रिक्वेस्ट ये करूंगा कि प्लीज अपनी नमाज फर्स्ट अटेम्प्ट में दुरुस्त कर लें।
यही बात आई है, हमारी हम कह रहे क्या है, आज वो एहसास हुआ शिद्दत से मुझे कि मेरी नमाज में ही कमी है, वरना सब बुराइयां खत्म हो जाती। और सबसे बड़ी बुराई ये है कि जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल उसमें कोई, देयर इज नो क्वेश्चन, सब आर्टिस्ट बैठे हुए, ये तो इसको बेटा कभी भी ना समझना कि इसमें कोई गुंजाइश है कि हम गलत काम नहीं कर रहे, ये है ही ऐसा, ये बिल्कुल इसमें मैं बिल्कुल
बिल्कुल हमें ये एक चस्का है
जिनको, और मैं बिल्कुल सर, मैं
हमारी बड़ी सर्विसेज है, ये चस्का है, हम छोड़ना चाहें तो सुबह ही छोड़ सकते हैं, अभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जो ये चस्का है, जैसे किसी को पान लगा हुआ है, किसी को शराब लगी हुई है, वो कहें इंशाल्लाह ये है बस आखिरी पीने कल वो कहें ये मेरी आखिरी बोतल है बस अभी रह गई है कल पी के बाद चढ़ सकते, ये चस्का है। हम जो ले नहीं रहे, जिस दिन ले लिया, अभी तो ये शुक्र है कि अनीस भाई मिले और भाई सारे मिले, भाई मिले सुहेल भाई बैठे हुए, सारे लोग मिले हैं अहमद भाई, तो इन्होंने हमें बुलाया, हमने इनकी सोबत में आना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आ गए हैं। उम्मीद है आगे भी, अब आपकी भी सोबत में आ गए हैं, आज आपको सुना है, हजरत साहब को सुना है, तो उम्मीद है कि ये चस्के से हम बाहर आ जाएंगे। हमें फर्क है, फर्क है जैसे
कर रहे हैं।
हाँ,
देखे आया था मैं 91 में माहौल में आया हूँ दाऊद, इससे पहले मैं माहौल में नहीं था, इसलिए मतलब जाहिर है जब एक आदमी माहौल में नहीं होता ना, तो उसने भी फिल्में ड्रामे और सारा के माहौल को उसने भी चखा हुआ होता है। ठीक है, ये सब है तो चखा हुआ होता था। अब ये कितना पुराना गीत के बोल थे जो मैंने आपको बयान किए, बहुत पुराने,
आपसे सुनेंगे
बहुत पुराने गीत के बोल थे जो ये चलते रहते थे टेप रिकॉर्डर के अंदर। ठीक है, अब ऐसे कितने कुफरियात गानों में भरे हुए, तुझको दी सूरत परी सी दिल नहीं तुझको दिया, मिलता खुदा तो पूछता ये जुल्म तूने क्यों किया। अब अल्लाह ताला को जालिम का अल्लाह ताला भूल गया है, माज अल्लाह ताला तो जो फुर्सत में बनाया यार, मतलब तुमको खुदा का तुम्हें डर, तुम डरते नहीं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के लिए ऐसे कलिमात इस्तेमाल करते हो, तो ये क्यों इल्म की कमी है, इसमें कई चीजें बाद अवकात ऐसी निकल जाती हैं जो कुफर हैं।
बिल्कुल,
बंदा काफिर हो जाता है, ईमान से खारिज, ईमान खारिज हो जाता है तो पता भी नहीं चलता कि मेरा ईमान जाया हो गया है इल्म की कमी की वजह से। इसमें अमीले सुन्नती किताबें कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल
जी, वो
ये किताब अगर आपने नहीं,
मेरे पास है,
ये इन्हें तोहफे में दीजिए, ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको पढ़ें।
तोहफे में बस दुआ ही ध्यान
नहीं, आप और
लेता
में दुआ तो ये ना, दुआ में जाता ही कुछ नहीं, मिलता ही मिलता है।
अच्छा,
तोहफे में भी मिलता ही मिलता है, जब निकी मिलती हो तो ले लेनी चाहिए। और आप जैसे लोग आकर हमें नीकियां ही दे के जाते हैं, लेकर क्या जाते हैं आप लोग?
हम तो आपको मौका देते हैं दुआ करने में।
अल्लाह ताला आपको, हम सबका ईमान सलामत रखे और हमें नीकी की तौफीक अता करे।
हम जैसे बदकारों पे ज्यादा नजर रखा गया,
अल्लाह करे कि
हम जब तो सारे आते हैं दाढ़ी वाले, यहाँ इबादत वाले, हम जैसे तो कम ही आते हैं।
क्या पता आप बिगड़ दाढ़ी के आखिरी बार आए हो, आइंदा जब भी आए दाढ़ी वाले आए।
मैं उससे भी कहता रहता हूँ, यार दुआ की अगर मौत कम से कम तेरी शक्ल में है, ऐसे में चले जाए आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब ये देखे, दाढ़ी भी एक अजीब मसला है, ये देखें कि इनसे पूछे ये तो चलो एक तो नहीं बेचारे मजबूर मेरी तरह शायद सोचते होंगे कि दाढ़ी की तजीक होती है, हम समझते हैं कि दाढ़ी रख लें तो गंदे गंदे रोल करते हैं तो उसमें दाढ़ी की तजीक होती है, लेकिन आम बंदे जो हैं वो दाढ़ी साफ क्यों करते हैं ये नहीं समझ आती। सर कहीं से पूछा मैंने, यार तुम शेव क्यों करते हो? जिससे भी पूछता हूँ आगे से करते, अबे मैंने कहा काम करते हो, सुबह उठते हो, आईने में यूं देखते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक सुन्नत है तो शर्म भी नहीं आती, कोई वजह तो होगी आखिर, क्यों करते हो ये काम तुम सुबह सुबह? लेकिन किसी ने आज तक नहीं जवाब दिया कि क्यों।
और हम लोग
कल्चर कल्चर बन गया,
बन गया,
फैशन बन गया है लिबास का, कपड़ों का, चेहरों का, आजकल बालियों का, आजकल
कड़े बड़े
कोनियों का,
इसका
ये सारा कल्चर।
मगर ये बिल्कुल माहौल से होता है सर। मेरे बच्चे दो हिफ्स किए उन्होंने, जब हिफ्स किया तो दस्तारबंदी के लिए बुलाया उन्होंने मदरसे से कि ये बच्चे आपके हुए हैं तो दस्तारबंदी के लिए, वो मस्जिद में वहां उन्होंने, आप सबके सुनने की बात है ऐसे इंटरेस्टिंग, तो वो वहां पे मस्जिद में दस्तारबंदी हो रही थी इसी तरह जैसा मस्जिद है बड़ी, तो वहां पे मैं भी चला गया, उन्होंने वालदेन को बुलाया तो वालिद सब बैठे हुए, अब 200 बच्चे हिफ्स किए हुए थे तो उनमें मैं भी बैठा उन बापों में, तो जनाब वो जो वालिद बैठे थे तो मैं वहां वो दस्तारबंदी हो रही बच्चों की, तो मैंने एक नजर जो यूं देखा दाढ़ियां 200 बंदे बैठे हुए, इधर देखूं तो दाढ़ियां, और कसम से ईमान से मैं कह रहा हूं आपसे वजू में हूं, मुझे ऐसा लगा जैसे यार क्या खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं और मैं खुसरा सा बैठा हूं बगैर दाढ़ी के। यानी वो एक बाकायदा माहौल ऐसा बन जाता है कि वो हुस्न बन जाता है, हमारा हुस्न का माहौल शेप बन गया है।
औरत ने चुटिया कटवा दी, मर्द ने दाढ़ी कटवा दी,
करवा दी,
और
अब जहाँ
मर्दों वाली
असल में दोनों चल पड़े हैं, उसको औरत बनने का शौक हो गया है, बालियां पहननी है, चुटिया रखनी है, इस तरह की हरकतें करनी है।
अभी
आजकल शादी ब्याह में मंगनी में सुना है दुपट्टे भी लड़के पहन के नाचते वाचते हैं।
हाँ जी, हाँ जी,
तो ये कल्चर चल पड़ा है, औरत को जुनून चढ़ा है मर्द बनने का। अब मसला ये है कि मर्दानी वजा इख्तियार करने वाली औरत
जी
और जनानी वजा इख्तियार करने वाले मर्द पर लानत की गई है। अब ये दोनों को सुधरने का नाम नहीं ले रहे,
ये बढ़ता जा रहा है काम से।
आप लोगों को देखे लगा रही, आप लोग जहां मैसेज लेके जा रहे हैं कोई अरज नहीं है,
लेकिन हम बड़ा रोकते हैं।
बल देखो अन्नी बलो, देखो हदीस पाक, बल देखो अन्नी बलो आया, हदीस पाक नबी पाक ने फरमाया पहुंचा तो मेरी तरफ से एक ही आयत क्यों ना हो। आपको लगता है कि मैं नेकी नहीं कर रहा? नेकी की दावत देना नेकी है,
मगर सर हमें बेशर्म आती है,
ये भी अच्छी चीज है ना, आदमी को बेशर्म होना भी नहीं चाहिए लगा के साथ।
नहीं, वो शर्म ही आती है, क्या ये दिल में क्या कहता होगा कि यार
जो भी
काम क्या कर रहे हो और बात क्या कर रहे हो।
हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब के हुजूर अर्ज की, या अल्लाह तेरा बंदा तेरे बंदे को नेकी की दावत है, बुराई से मना करे, तेरी बारगाह में इसका क्या अजर? अल्लाह ताला फरमाते मूसा मैं उसे हर कलीमे पर एक साल की इबादत का सवाब देता
हूँ,
और उसे जहन्नम की सजा देने में मुझे हया आती है। अब मसला ये है کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دینے پر جب اتر آتے ہیں نا,
ہاں جی,
تو ہمارے دل میں خود ہی نیکی اتر آتی ہے,
اتر آتی ہے
اور ہمیں راستہ مل جاتا ہے. قرآن کریم میں واضح طور پہ ارشاد ہے, وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. ٹھیک ہے
جی,
یہ تو ہو گیا. قول و فعل کے تضاد سے بچنا یہ ہمارے دین کا, ہمارے اسلام کا حصہ ہے. نیکی کی دعوت دینے کا حصہ اسلام و دین نے رکھا ہے. صحابہ کرم علی رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, کیا ہم اس وقت نیکی کی دعوت دیں جب ہم نیک بن چکے ہوں, اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکے جب ہم برائی سے بچ چکے ہوں؟ ارشاد فرمایا, نیکی کرتے رہو, نیکی کی دعوت دیتے رہو, برائی سے بچتے رہو, دوسروں کو بچاتے رہو. وہ گھڑی کب آئے گی کہ جب بندہ یہ کہے گا کہ اب میں نیک بن گیا ہوں؟
وہ تو کبھی شاید, بالکل بالکل
ایسی گھڑی. جو یہ بولے گا میں نیک بن گیا ہوں, تو اس کو بولو کہ پرائم سے دوبارہ شروع کر بھائی.
پرفیکشن تو نہیں,
پرفیکشن تو نہیں ہے نا, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نیک بن گیا ہوں. میں نے اگر کوئی مثال دو گا, زندگی میں نیکیاں کی بھی ہیں تو مجھے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ میری نیکی میرے رب نے قبول بھی کی ہے. جب تک میرا رب قبول نہیں کر لے, میرے لیے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ میری نیکی قبول ہو گئی ہے. تو اخلاص شرط ہے نا. تو بندہ, آپ کے جو پروفیشن کے جو لوگ ہیں, میں یہ تو کبھی بھی نہیں کہوں گا آپ نے پروفیشن میں جائیں اور نیکی کی دعوت ہیں, یہ تو میں ڈیفینیٹلی نہیں کہوں گا. پروفیشن سے باہر آئیں, جو بھی خراب پروفیشن ہے, گناہ والا پروفیشن ہے, اس سے باہر آئیں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور لوگوں کو آپ بچانے کی کوشش کریں اور ان لوگوں میں اپنا نام لکھائیں. دیکھیں, آپ کا نام شاید کتاب میں آ ہی جائے گا, لیکن ایک ایز اے آرٹسٹ آئے گا اور لوگ آپ کو ایز اے آرٹسٹ ہی یاد کریں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کل ایک کتاب ایسی آئے جس میں آپ کا نام آئے کہ اس نے اتنے سال بطور آرٹسٹ گزارے, اللہ نے اس کو زندگی کے حصے میں ہدایت دی, اس نے توبہ کی اور آج اس کا نام اسلام کے مبلغین میں لکھا جا رہا ہے. کیا جب یار, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر نبی پاک کو شہید کرنے چلے تھے, راستے میں ہدایت مل گئی نا. اور جو آقا کو شہید کرنے چلے تھے, آقا کے جانثار بن گئے اور اسلام کے دوسرے امیر المومنین بن گئے.
بے شک,
اس لیے کبھی بھی اس بات کو نہ دیکھے یار میں تو یہاں ہوں نہ یہی ہوں, نہ نکلیں.
ہم اتنی تبلیغ تو کرتے ہی رہتے ہیں کہ یار توبہ معافی میں رہو, اس کو تکبر نہ کرو کہ میں اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا ایکٹر ہوں یا بڑی اچھی ایکٹریس ہوں. کبھی اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یار توبہ, یہ دیکھو تم ہٹ ہو گئے ہو تو یہ سوچو کہ پتہ نہیں ادھر ہٹ ہو یا نہیں, توبہ معافی میں رہو.
گناہ سے تو بندہ الٹا گرتا ہی ہے, گرتا ہی ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اٹھ رہا ہوں. یہ وہ ترقی ہے, ماخوذ سمجھتے ہیں الٹی ترقی. ہم غلط سمت جا رہے ہیں, ہمیں ایسی گاڑی میں بیٹھنا ہے جو ہمیں مدینے کی طرف لے کے جائے.
چلے, ہم
عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے.
خوش قسمتی ہماری یہ تو ہے کہ ہم جس گاڑی میں بیٹھے آپ تک تو پہنچ گئے.
تصویریں موبائل میں لے کے فیس بک پہ اپلوڈ کرنا یہ صحیح ہے؟
اسکرین کے اندر ہے, صحیح ہے, باہر نکالیں گے تو غلط ہو جائے گا.
اگر کوئی آپ کی پکس لیتا ہے موبائل پہ, آپ منع کرتے ہیں اس کو؟
میں منع کرتا ہوں.
تو اسکرین کے اندر ہے نا, کیوں منع کر رہے ہیں؟
میں ذاتی طور پر ایک دیکھیں, ایک مذہبی آدمی کو عموماً یہ پسند نہیں کیا جائے گا کہ وہ پوز دیتا پھرے.
ہاں,
میں خود ذاتی طور پہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ یہ کھڑے ہو کر مطلب کہ پوز دینا, کیونکہ اس سے کوئی نیکی کی دعوت نہیں ہے. آپ میری کوئی چیز لینا چاہتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے تو لوگوں کو نیکی کی دعوت پہنچی. پبلک کا کام ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ خالی خالی اپنا چہرہ دکھانے کا کیا فائدہ؟
اچھا, میرے والدین نہیں ہیں, ان کی پرنٹ آؤٹ نکلے ہوئے پکس, تو اس کو میں پھاڑ دوں گا.
انشاءاللہ والدین کو راحت پہنچے گی.
سارے جتنے بھی,
ہاں والدین کو راحت پہنچے گی انشاءاللہ. کیا بولتا, خواب میں آ کر شکریہ ادا کر دیں.
اچھا, شکر ہے اللہ کا, اس بات کا شکر ہے کہ موبائل میں تصویریں فیملی کی اپنی کھینچی ہیں. اس میں نے کہا نکلوا لاؤ تو میں نے کبھی نہیں نکلوائی. میرے پاس میرے والدین کی بھی کوئی تصویر نہیں,
ہونی بھی نہیں چاہیے.
اللہ میں
آپ بہت ٹائم ہو گیا آپ
کو,
اللہ بہت شکریہ. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما, گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، سچی توبہ کی توفیق دے، سچی توبہ کی ہمت دے، سچی توبہ کا جذبہ دے، یا اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو تیری نافرمانی سے بچا، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا یہ آنا قبول فرما، اپنے پیارے حبیب کی سچی پکی غلامی ہمارا مقدر کر، صلاۃ و السلام علیکم یا رسول اللہ. ویسے یہاں لگا کیسا آپ کو آنا؟ فرسٹ ٹائم آیا لگا رہی صاحب، آپ کا مائک نکال دیا آپ نے.
جی میں یہاں فرسٹ ٹائم آیا، نہیں نکالا تھا جی، لگا لگا ہوا.
اچھا آپ فرسٹ ٹائم آئے؟
میں پہلی بار آیا.
کیسا لگا آپ کو؟
الحمدللہ
آتے رہیں گے،
ڈیووٹیڈ لوگ ہیں آپ، اچھا
آتے رہیں گے،
بلائیں گے تو آ جائیں گے.
کب بلاؤں؟
جب
پھر آ جائیے،
پتا نہیں جب بلائیں گے آ ہی جائیں گے،
آتے رہیں گے. اپنا مدنی مرکز سمجھیے.
ہاں جی
دیکھیں، یہاں آنا اللہ کے لیے وقت دینا ہے،
ماشاء
اللہ اللہ کے لیے وقت دیں. آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم آئے.
فرسٹ ٹائم آئے،
بڑے مشہور ماشاء اللہ ہستی ہیں.
تعارف
حضرت صاحب نے آج بڑا ڈرایا ہے کہ مجھے یہ اوپر لے کے آ رہے تھے بھائی، تو آگے سے تین چار کریکٹر کھڑے ہوئے تھے، تو ہم سارا سونا سرکار کو، تو وہ اوپر آ گئے، وہ کہیں گے خان جی انہوں نے آج تمہیں ہی بزت کر دیتا ہے، فنکار آدھے پیچھے پی گئے نا. میں نے کہا بھائی انہوں نے کون سی بات غلط کہی ہے، جو دین میں ہے انہوں نے کہا ہے.
بہت پیاری
وہی بات کی ہے جو اللہ رسول نے جس چیز پہ بندے کے انہوں نے وہی بیان کی ہے، اس سے زیادہ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. لیکن ایک چیز ہے ہی غلط ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، وہی بات لگا رہی تھا.
ماشاء اللہ
سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے، ہم ریلائز کرتے ہیں کہ وی آر گوئنگ رانگ. حالانکہ ہم پڑھے لکھے اچھے کالج میں پڑھے، جو بھی اچھا خاندانی بیک گراؤنڈ ہمارا، ساری فیملی پڑھے ہوئے، گھر پہ ہر وقت لوگ بیٹھے ہوئے پڑھائیاں کر رہے ہیں، بیٹوں نے ماشاءاللہ اتنی اتنی داڑیاں رکھی ہیں، پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں سب. لیکن ہم اپنا فخر ہے، انٹرویو ہے، جا رہے ہیں خاص صاحب خاص صاحب، وہ پروٹوکول نے ہمیں روکا ہوا ہے، وہ جو جھوٹا ہے جس نے ہمیں جہنم کی آگ میں جلانا ہے. ہم
اللہ نہ جلا دے
بڑے، اب یہ ساری باتیں ہیں جو اب آپ بڑی تیزی سے ہم پہ اثر کر رہے ہیں. ہم نا فلم میں کام کر رہے ہوتے ہیں بدماش کا، تو ایک دم وہ لڑکی اٹھانے آئے اور وہیں اس لڑکی نے اچانک اس نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی میری عزت بچا دو، تو میں سیدھا ہو گیا ہوں، میں ہیرو بن گیا ہوں. اور میں نے اس کے ساتھ سیدھا ہونے کی وہ ایک فلام میں کہ نہیں بھائی، بہن بہن ہوتی ہے، چاہے وہ دشمن کی ہو یا دوست. یہ ہے کسی وقت بھی اب ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ہم ایک دم جو ہے نا چینج ہو کے ادھر سے یو گن جو ہوگی، ایک دم گن ہم لے آپ کی پوزیشن میں آ کے سامنے کھڑے گا. اوے نماز پڑھنی ہے
شیطان کے خلاف، آپ بھی نعرہ لگاؤ تو شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی.
آج میں نے کہہ رہا تھا، میں نے کیا کہا تھا، مجھے تلوار دے دو. اگر تم نے فاروق رضی اللہ عنہ والے کہ ہماری جلالی طبیعت ہے نا، جیسے ابھی میں ان کو سن رہا تھا تو میں ایک دم پھر میں بول نہیں رہا تھا، میں شروع ہو گیا. میں پاکستان فلم انڈسٹری کا چیئرمین بھی ہوں، آرٹسٹوں کا یونین کا، تین چار بڑی بڑی ایسوسی ایشن ہیں، کسی کے میں جنرل سیکرٹری ہوں، کسی میں تو وہ بڑے بڑے لوگ ایکٹر ہمارے سے ہے، گھبراتے ہیں کہ خان صاحب انہیں بول پہن گی انہیں. لیکن جو بات صحیح ہے ہم اس سے ڈنائی نہیں کرتے. بہت خوشی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں ایک دو محفلیں ایسی ہوگی بس یہ کام نہیں چھٹ گیا. یعنی کہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے.
اور یہ
میرے بارے میں جو مجھے لائے ہیں یہاں تک پہنچایا ہے، وہ کہیں گے کہ یار یہ بڑا کمیٹڈ آدمی ہے اور یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ سب کہہ رہے ہیں.
نہیں ہم آنر کریں گے آپ کی باتوں کو،
ایسے کہہ رہے ہیں. تو یہ اب سچویشن ایسی بن گئی کہ کسی وقت بھی کیا ہے.
بات وہی کہ چسکا، اور وہ چسکے بیچ میں نا پیسے ڈال رہا ہے
وہ جو ہمیں، کیونکہ آپ سگریٹ کہ چھوڑنے جو پینے والا ہوتا ہے نا، اس کو آپ کبھی کہیں کہ یا سگریٹ کو کہے گا سر جی بتا ڈبی کو کہاں دو، تو انشاءاللہ میں کل چھڑ دیا. یا کسی طرح وہ بوتل والے کو ہم نے دیکھا، حالانکہ ہمیں نہیں ہے، ہم انڈسٹری میں ہیں، مجھے 30 سال مسلسل ہو گئے ہیں. تو لیکن کیا ہے، نہ سگریٹ ہے، نہ پان ہے، نہ کچھ نہیں. ہاں پہلوانی کا شوق ہے، دوڑ لگاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، صبح نماز پڑھی، گلشن پارک چلے گئے، یہ شوق ہے ہمارے. لیکن ہمیں آج تک وہ برائی وہ چیز ہم پہ اثر انداز نہیں ہو سکی،
الحمدللہ.
یہ سب سے بڑی بات ہے. جس طرح یہ ہیں خاندانی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بڑی بڑی محفلوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، ہر طرح کے رینک کے لوگ ہیں، منسٹروں کے ساتھ میٹنگ ہیں، سی ایم کو ملے ہیں، پی ایم کو ملے ہیں، گورنر کو ملے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں. لیکن یہ ایک ٹھرک ہے ہمیں جو ہم ادھر لگے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی کچھ نہیں
ہے غلط وہ.
جی سر، اب یہ ٹھرک مجھے لگتا ہے کہ یہ چھٹے گا. جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا انہوں نے پوچھا آپ کیا محسوس کیا، میں نے کہا الحمدللہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، آج ہمارا ایمان تازہ ہو گیا. ये लफ्ज थे मेरे. मैंने कहा आज जब मैं फर्स्ट टाइम इनके पास आया, मैंने कहा हमारा ईमान ताजा हो गया इंशाल्लाह ताला. मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जब बुलाएंगे, जब जहां बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ. तो ये जहां भी उन्होंने कहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक पहुंच गए. और आज आपसे इस वक्त इस महफिल में आपसे बहुत ज्यादा
मुताबिक आप में कुछ है
ताकत है आपने है
वो एक डायलॉग है ना.
लेकिन अभी मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हूँ ना चेंज हो जाए एकदम इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव कर दोगे मैं ऐलान किया कि मैं खत्म कर देता.
दीन और इस्लाम में मजाक की ये मजाक जिस तरह का देखे मिजाक जिसको आप खुशतबी कहते हैं मिजाज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है. मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में ना झूठ है ना किसी किस्म की किसी की हक तलफी है. देखिए आपको जो कुछ स्क्रिप्ट मिला
जी
और ये मिला वो ऐसा स्क्रिप्ट है कि जो किसी मुफ्ती से वेरीफाई करवाया गया नो पॉसिबल ही नहीं है वहां मतलब ये गुंजाइश ही नहीं है. आपके यहां मैं नाम नहीं लेना चाहता
सेंसर कर
मैं आश्वस्त करता हूं. आप हमारे मुल्क में चंद वर्षों पहले एक पिक्चर का बड़ा शोरा हुआ और उस पिक्चर के अंदर हमें बाकायदा एक सवाल नामा आया कि ये पिक्चर है उस पिक्चर के अंदर ये सारे डायलॉग डिलीवरियां हुई हैं इस्लाम दीन खुदा वगैरह वगैरह. हमने बाकायदा उस सवाल पर फतवा तैयार किया. फतवे में कई चीजें कुफर थी ठीक है. अब हमारे पास भी मीडिया है लेकिन हमारी प्रैक्टिस तक हम इस तरह नहीं चलते. मैं खुद मेरे साथ दो आदमी और मुफ्ती साहब मैं बाकायदा पांच फाइलें बनाकर उस इदारे से टाइम लेकर उसकी अथॉरिटी से टाइम लेकर अपने साथ दो आदमी और एक मुफ्ती साहब लेकर हम चार आदमी उस इदारे में गए. उनकी जो अथॉरिटीज थी उनसे हमने मुलाकात की. पहले उन सबके टेबलों पर हमने फाइल रख दी कि प्लीज चार सफे थे हमने लंबा लेके जाएंगे बेचारे पढ़ेंगे नहीं. उन्होंने तसल्ली के साथ फाइल पढ़ी. सर जी आप क्या कहते हैं. हमने कहा ये हुकुम शरीयत है कौन गुमराह हो रही है. इन्होंने दलाइल दिए कि जनाब हम तो यूं चाहते हैं हम तो यूं चाहते हैं हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं. मुफ्ती साहब ने एक एक चीज का वहां जवाब दिया कि आप जो कुछ चाह रहे हो शरीयत उसको एंडोर्स करती है. ये तो आपकी अपनी इख्तरा है ना कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है. शरीयत को पूछो कि इससे क्या फर्क पड़ता है. कुरान को कुरान कहेगा कि फर्क पड़ता है हदीस कहेगी कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता. फुकहाए किराम कहेंगे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता. वी आर नॉट अथॉरिटी. एक वकील अलग है जज तो अलग है ना. वकील बोले कि मैं जज बन जाऊंगा ऐसा नहीं हो सकता. एक आम आदमी वकील नहीं बन सकता. मतलब एक मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक जज जानता है. जज वेरी जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत हाईली जज होगा वो कुछ और ही ज्यादा जानता होगा. तो जो कानून मुल्क के एक जज जानता है एक जज अथॉरिटी है वो एक आम शहरी तो नहीं ना जानता. इसी तरह जो हुकुम शरीयत कुरान और हदीस के अहकाम जो एक मुफ्ती इस्लाम जानता है ना वो एक आम मुसलमान नहीं जानता. बोलता तो वो भी है मैं भी मुसलमान हूं मैं भी दीन को जानता हूं मगर तो मुफ्ती और आलिम नहीं हो. जिस तरह एक आम आदमी और एक जज को पर पाकिस्तानी तो वो भी है पाकिस्तानी तो जज भी है लेकिन मुल्क के बायलॉज को जो जज जानता है वो एक आम शहरी नहीं जानता. इसी तरह शरीयत के अहकाम को जितना एक मुफ्ती जानता है इतना आम मुसलमान नहीं जानता.
बेशक
जब जज कहता है कि भाई आपने ये काम किया ना आपके आपने ये कानून तोड़ा है हम कहां अपील करते हैं. तो अपील एक जगह जाकर हमारी स्टॉप हो जाती है.
सही.
इसी तरह जब एक मुफ्ती कह दे ना वो मुफ्ती है इस्लाम मुफ्ती कह दे ना कि नहीं ये हराम है ये नाजायज है माज़ अल्लाह ये कुफर है तो फिर हमें कलाम ही करना चाहिए. हमें वहीं स्टॉप कर लेना चाहिए. ठीक है स्टॉप हैंड्स अप बिकॉज वी आर मुस्लिम. और हमें कहीं ना कहीं जगह पर आकर भाई आपका जो प्रोफेशन है एक को आप अथॉरिटी आपका डायरेक्टर है पीछे कौन होता है पीछे जो डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है. हाँ स्टॉप भाई क्या हुआ मींस यार मैंने तो सही किया था भाई जो मुझे चाहिए वो नहीं किया
वो नहीं किया.
अब देखिए लोग बेटा करें
हम तो इसलिए कर रहे होते हैं कि बताएं कि ये बुरी चीज है हमारे किसी जाम में बुरी चीज को जस्टिफाई नहीं किया जाता.
बुरी चीज को साबित करने के लिए उस बुराई का इजहार करना और उस बुराई के सांचे में ढलकर बयान करना इसकी इजाजत नहीं है. कुरान में मौजूद है हदीस में मौजूद है इसकी बुराई मौजूद है.
तो फिर तो एक्टिंग बजाते खुद भी क्लोनिंग की तरह.
मैंने अर्ज किया ना कि एक्टिंग की कई चीजें ऐसी आ जाएंगी कि जब आप ये करने जा रहे होंगे तो वहां पर आपको रोका जाएगा. इसलिए देखिए मैं आपको वही बात जो शुरू में की थी वो मैं आपको दोबारा अर्ज करूंगा कि जो चीजें सालों में जाकर एक मुसलमान को समझ में आती हैं, जैसे आप थोड़ी देर के अंदर आपको फीलिंग्स आपकी पता है, आपने 45 साल से आप नमाज पढ़ रहे हैं, 40 साल से आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 45 मिनट में आपने रियलाइज किया कि यार मेरी नमाज में मिसिंग मौजूद है, ठीक है, आपको क्यों ना पता चला 45 साल के अंदर?
इग्नोर करते रहे,
ठीक है, लेकिन अब मजीद थोड़ा सा पावरफुली तौर पर आपको पता चला। तो ये चीज जब हमें पता चलती है तो पता होगा ना, तो जो चीज हम कर रहे हैं उनमें जो लेना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें गलत है, एक्टिंग कोई रोल प्ले करना उसके बारे में हमें शरई रहनुमाई लेनी पड़ेगी कि मैं ये रोल प्ले करने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पर एक मर्द एक औरत बनने जा रहा है, भाई सबको पता है कि ये औरत नहीं है मर्द है, मगर उसको औरत बनने की इजाजत नहीं दी जाएगी इवन एक्टिंग के अंदर भी। तो इस तरह की चीजें हैं जिनको बाकायदा गौर तलब चीजें हैं। और देखिए ये जैसे आप भी वेरी सॉलिटस है जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि इंडस्ट्री गुनाहों की यलगार है, गुनाहों का दलदल है, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब कि हम, मैंने कहा ना, हम कोयले को धोने की कोशिश क्यों करें। बहुत मैं आपकी बात से इतना मुतासर हुआ हूं खान साहब, रियली इतना मुतासर हुआ हूं कि यार यहां कोई डिबेट नहीं है, यहां एडमिट है, यहां एडमिट स्टेज आ जाता है ना वह डिबेट स्टेज खत्म हो जाता है, यहां एडमिट है कि यार वी आर गोइंग रॉन्ग। ये इतनी परफेक्ट और इतनी नीट एंड क्लीन डिस्कशन है। अच्छा ये एक होप है, ये आपने डिस्कस की ना, ये चराग में मौजूद एक तेल है जो टिमटिमाता चराग में एक तेल है, और जो एहसास है ना जो आपके अंदर इस वक्त एक एहसास है कि मैं किसी वक्त भी कमजे कर सकता हूं, ये एहसास है ना, ये बहुत अच्छी शेयर है। ये एहसास ही इंसान को वापस लाता है। जब बंदा फर्स्ट इन द रियलाइज करता है, आपने मुझे तकलीफ दी, जब तक आपको ये रियलाइज ही नहीं होगा कि आपने मुझे तकलीफ दी, आप उसे एक्सक्यूज कैसे करेंगे। जब बंदे को पता चले ना कि मैं गुनाह कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं, तभी वो माफी की तरफ बढ़ता है ना। गुनाह है ना ये कुफर की दावत देते हैं। बंदा जब गुनाह की तरफ बढ़ता है ना तो आगे डर है कि अगला कदम उसका कुफर में ना जा पड़े। इसलिए देखिए गुनाह छोड़ने ही वाली शे है, और अल्लाह ताला की नाफरमानी ये है ही गलत है, सगीरा हो या कबीरा हो। गोदाम जलाने के लिए आग का गोला नहीं चिंगारी काफी है। बंदा मतलब शॉर्ट सर्किट से भी डरता है कि मेरे
गोदाम। मुसलमानों का मुल्क है और दीन का कॉन्स्टिट्यूशन आप ये कार से कहता है कि जैसे ही काम नहीं हो सकता, फिर आप सब लोग जो लाखों की तादाद में हैं क्यों नहीं खड़े हो जाते और इनके बंद करा देते।
देखें करता हूं हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम
जबानी जहाज है ना,
नहीं अर्ज करता हूं
फिजिकल की बात।
फिजिकल ही होगा जब आप माशरे के हर तबके में जाकर खौफे खुदा पैदा करवा देंगे। इसी माशरे के किसी न किसी तबके ने निकल कर ही आपके रूरल प्लेटफॉर्म पर आकर बैठना है, ठीक है। 20 करोड़ आवाम, 25 करोड़ आवाम, 40 करोड़ आवाम जितनी भी ले लें, आपका एक काम ले लें आप कि मैंने इस कौम के दिल में खौफे खुदा पैदा करवा देना है। वो कॉलेज से आएगा, यूनिवर्सिटी से आएगा, किसी न किसी इदारे से आगे आएगा ना, या तो फिर सीएसएस का कहीं ब्यूरोक्रेसी कर रहा होगा, तो कहीं और कुछ किसी क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। जब आप इस कौम के दिल में खौफे खुदा पैदा करवा देंगे, अब वो किसी भी स्टेज से आ जाए उसने बैठकर वही काम करना है जो अल्लाह ताला की रिजा के मुताबिक होगा, मामला ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। वरना आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आप पॉलिटिक्स में आकर कोई खैर कर लेंगे? इस वक्त जब तक कि किसी की बुराई ना करो, कोई पॉलिटिक्स में कोई जगह ही नहीं है। अल्लाह के हुक्म को नाफिज करवाने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानियां करे बंदा, इसके तो मुकल्लफ भी नहीं है।
आपके पास तो लाखों लोग हैं।
36 साल दावत इस्लामी की तारीख में कभी दावत इस्लामी ने एहतजाज नहीं किया।
नहीं मगर ये जहाद की बात नहीं है, हमारे तो जहाद है कौम के लिए, मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए।
हम
एक गलत काम हो रहा है उसको बंद करने के लिए
अर्थ नहीं
क्यों
याद करें। दुकानें बंद करना, सड़क बंद करना, लोगों को तकलीफ देना, ये हरगिज इसकी इजाजत नहीं है। गलत चीज गलत तरीके से सही कभी भी नहीं हो सकती। कपड़ा नापाक है ना, पेशाब से पाक नहीं होगा। नापाक कपड़ा पाक पानी से पाक होगा।
अच्छी मिसाल दे दी आपने। हम तो कह रहे हैं कि हमारे
देखिए तबलीग है ना, आप तो पाकिस्तान में रहते हैं ना, मैं इस वक्त दुनिया में करोड़ों मुसलमान है, अरबों मुसलमान, ढाई अरब के आसपास दुनिया में मुसलमान कहलाते हैं
जी।
ठीक है, इस वक्त ऑलमोस्ट दुनिया की 23% मुस्लिम पॉपुलेशन दुनिया की एग्जिस्ट करती है। हमने सबको जाकर तबलीग करनी है, पहला है कलीमतुल हक, अल्लाह ताला के कलीमे को बुलंद करना, और इसके लिए हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है। जो जो मतलब के लड़ाई शैतान के साथ, नफ्स के साथ, गुनाहों के साथ, बुराइयों के साथ कर रहे, जैसे अब मैं आपके सामने बैठा हूं, आप इस वक्त मुझे कह रहे हैं इमरान तुम यूं लग रहे हो, तुम यूं लग रहे हो, तुम यूं लग रहे हो, आप 91 में मुझसे मिलते तो फिर आप पूछते कि मैं कैसा लग रहा हूं। ठीक है, मुझे बदला दावत इस्लामी ने, आज नीचे जितने लोग बैठे हैं इनको बदला दावत, हमारे पास डाकू भी हैं, चोर भी हैं, उच्चके भी हैं, एक से एक क्रिमिनल से क्रिमिनल किस्म का आदमी इस वक्त दावत इस्लामी में आकर इस वक्त तबलीग कर रहा है, नीकी की दावत दे रहा है, माशरे को दुरुस्त कर रहा है। हम जेलों में जाकर काम कर रहे हैं, कितने कैदी हैं इस वक्त, जेलर जो भी आपका आईजी जेलर हो जिसने आपके 5 सालों में हमको देखा होगा, आप उसको जाकर इंटरव्यू ले लें, बोलेगा हमसे तो नहीं सुधरा, दावत इस्लामी वालों ने सुधार दिया। क्यों? कि कैदी भी तबलीग मांग रहा है। देखिए पहले के दौर में जो थी ना तबलीग थी, पहले लोग जुर्म करते थे इनको जेलों में डाला जाता था, जेलों में एक शोभा होता था नेकी की दावत का, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का वो शोभा होता था, वो कैदियों को वो शोभे के सिपुर्द करते थे, वो शोभा इनमें खौफे खुदा, जन्नत की तलब और जहन्नम का खौफ दिलाता था, वो चोरी से, शराब से, जुए से, बदमाशी से, गुनाहों से तौबा करके बाहर निकलते थे। आज छोटा मुजरिम जाता है बड़ा मुजरिम बन के निकलता है, आपके बड़े बड़े लोग अंदर में मतलब के माफियागिरी कर रहे होते हैं, ये सब पता है। लेकिन हम इसी जेल में, हम दावत इस्लामी लेकर इसी जेल में गए, हमने अपने बैरक्स बनाए, मस्जिदें बनाए, मदरसे बनाए, हमने आलिम बनाए जेल के अंदर, दरसे निजामी कराते हम जेल के अंदर। तो ये अच्छा, लाखों इस्लामी बहनें जो बेपर्दा थी आज बापर्दा हैं, आज पूरे पूरे बुरके में हमारी इस्लामी बहनें होती हैं, ये कैसे हो गया यार? एक बाप अपनी बेटी को नहीं बदल सक रहा, दुपट्टा नहीं पहना पा रहा, इलियास कादरी एक बात करता है इस्लामी बहनें बुरका पहन लेती हैं, अल्लाह ने इनकी जबान में ताकत डाली। अब ये देखिए लगारी साहब के 35 साल में जो रिवोल्यूशन ये शख्सियत लेकर आई है, मैं दुनिया के 200 मुल्कों को जो अगर मैं देखता हूं, मुझे कहीं भी इतना बड़ा रिवोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, मीडिया के जरिए, एजुकेशन के जरिए, और फिजिकली लोगों को बदला है ना, आप तो बदलने वाले लोगों का माइंड बदलते हैं, हजरत साहब ने लोगों के माइंड भी बदले, इनको फिजिकली बदला। अच्छा आप तो चलो एक जिस लाइन के एक्टर के उमूमन नकल की जाती है, आजकल फला का हेयर स्टाइल चल रहा है, फला कितना चलता है 2-4-3 साल, इसमें लाख हजारों हो, मैं लाखों का फिगर चलो एक तरफ के लिए रोक लेता हूं इत्यादि तौर पर, मगर हजारों यंगस्टर वो हैं इस वक्त जो सिर्फ हम मेरे इस्लामिक आइकॉन हिस्टोरिकल पर्सन की गेटअप को नकल कर रहे हैं। इनके ये जुल्फे भी हैं, इमामा भी है, चादर भी है, कपड़े भी हैं,
बिल्कुल।
क्यों? कि ये अदा प्यारे मुस्तफा की अदा को अदा कर रहे हैं। ये जो रेवोल्यूशन है ना, ये किसी भी बड़े से बड़े लीडर से भी कंपेयर नहीं कर सकते आप। हमारे पास ये जितनी भी सियासी ग्रुप है ना, इन ग्रुपों के जो बड़े बड़े भी लोग होते हैं, ये आते हैं हमारे पास, आते हैं बैठते हैं, जैसा आप आए ना बैठे हैं सुने ना, ये आते हैं सुनते हैं। अब आप इतनी बड़ी अपने आप को कह रहे हैं ये चला रहा हूं, मैं ये चला रहा हूं, लेकिन आप अपने अंदर एक इनकलाब पा रहे, एक अंदर में फाइटिंग आप फील कर रहे हैं, कुछ अंदर में लड़ाई हो रही है, ठीक है, हालांकि आपके सामने पूरा आपका स्टेटस मौजूद है, मगर आपका दिल कर रहा है यार नहीं यार छोड़ो यार, ये गली सही नहीं है, ठीक है, ये यहां तक आप हैं। तो इसी तरह जो और शोबे के और जो तबके के लोग हैं, वो आते जब ये सुनते हैं ना, तो वो कहते छोड़ यार। एक सूबाई वजीर थे, मैं नाम नहीं लेता, उनका बैकग्राउंड पीर खाने वाला है, तो वो अमीर सुन्नत के पास मिलने के लिए, तो अमीर सुन्नत कहते आप कहां चले गए, कहां फंस गए हो, आपके बाप दादा तो पीरों वाले थे, आप कहां, इस वजह आप आ जाओ वापस। तो ये तो हम तो वापस बुलाते हैं, वापस आ जाओ, क्योंकि वापस जब तक होंगे नहीं ना, सुथरा रास्ता मिलेगा नहीं। हम लोग उसी जगह पर रहकर कहते हैं कि कोई रास्ता सुथरा हो जाए, नहीं होगा, मांझा टूट जाएगा, अगर मांझे की
कुछ खोलनी है तो बड़ी समझदारी के साथ खोलना पड़ेगा। टूटे हुए मांझे की गिठान लग सकती है तो कि हमेशा कच्चा रहेगा, खुद भी कड़ी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया
आपका,
एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं लेकर आया था ख्वाहिश आते ही बाबा जी से मुलाकात मेरी हो गई थी कि ये मैं चलकर, और मैंने नीत भाई से कहा था कि जाते ही मेरी बाबा जी से मुलाकात होनी चाहिए, वो हो गई और आपसे मुलाकात होगी। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अच्छा लगा।
सलाम। इसी